أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق اور دعا مانگ کر ہم آج کے دن کا آغاز کریں گے کہ اے مالک، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو ہم پہ اپنی رحمتیں عام کر دے. جتنا زیادہ آپ پر میں اللہ کی رحمتوں کو مانگیں گے، اتنی شیطان سے دوری کا بھی ذریعہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ابدی دشمن جس سے ہمیں متعارف کرا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بھی بچائے گا. کیسے ہیں آپ سب؟ ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی طور پہ تیار ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے محتسب بن جائیں. دعا کیجئے. صحابہ کی یہ بہت بڑی خوبی تھی جو آج ہمیں اپنے اندر کم ہی دکھتی ہے، کہ وہ اپنا حساب خود لیتے تھے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف تو ایک قول بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. جب ایک انسان خود اپنا محاسب بن جاتا ہے نا، تو پھر دوسرا اس کو محاسب نہیں بناتا. فرق سمجھ گئے فاعل اور مفعول کا ہے؟ جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں گے، اتنا ہمارا دل کھلے گا، اور بڑی عاجزی کے ساتھ تڑپ دل میں محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے یہ کہیے کہ مالک، مجھے آج کے پورے سبق میں سے، اس پورے پارے میں سے ایک بھی چیز چھوڑنے کی یا اس کو توجہ سے نہ سننے کی توفیق نہ دینا. اور دیکھیے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرا گمان بھی ہے اس پہ اور آپ سے امید بھی ہے، لیکن شیطان ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ چاک ہے، بہت ہوشیار ہے میرا آپ کا دشمن. اس نے آپ کے میرے لیے جو قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اس نے ہر قیمت پہ پورا کرنا ہے. مستقل کام کرتا ہے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے، اور کام کر کے پھر پچھتاتا نہیں ہے. تو آپ غافل ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کتنا ایکٹیو ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی جنگ میں ایک طرف کی فوج بہت تیاری نہ کرے تو دوسری بھی نہ کرے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک طرف کی فوج تیاری نہ کرے اور دوسری طرف ایکسٹرا آرڈنری پریپریشن کر کے آئے، تو پھر خطرے کی بات ہے. تو آپ کو مجھے اس شعور کے ساتھ آج کے سیشن کو شروع کرنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں بہترین طریقے سے کرنا ہے، جو بالکل بھی نہیں چاہے گا. اور اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ ہم بھٹک جائیں، ہم پیچھے ہو جائیں اور شیطان کے ہاتھوں میں آ جائیں. ایک چھوٹی سی اور ٹپ لے لیجئے، کیونکہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں، تو آج اس میں سے ایک اچھی چیز کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر دیں، اور میں اور آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے ہر لمحے جس طرح یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اسی طرح یہ بھی محسوس کیجئے کہ شیطان بھی ہمارے پیچھے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بھی بچائے اور ہم اس کے شر سے بھی بچیں. چلیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کریں گے، خاموشی کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اب ہم نے اپنے آپ کو پچھلی ساری معلومات سے دور کرنا ہے. ہمارے فونز، کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کی بھی ایکسٹرا ونڈوز کلوز، اور ہمارے برین، ہمارے دماغ کی بھی ساری ونڈوز کلوز. ٹھیک ہے، میں چند سیکنڈ شعور کے ساتھ خاموش رہوں گی، سوچ کے ساتھ کہ آپ بھی اس خاموشی میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2023 20 2020 में दूसरे पारे का आगाज करेंगे। पिछला पारा भी अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत से हमने देखा था कि किस तरीके से एक सेकंड के लिए भी तवज्जो इधर से उधर करने को दिल नहीं चाह रहा था। बिल्कुल इसी तरह से पारा नंबर 2 क्या है, आप और मैं इसके लिए पूरे दिल दिमाग से भी तैयार हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हमारे और इस पारे के बीच में कोई भी ना हो। आइए देखते हैं कि इस पारे में चंद चीज़ें जो बुनियादी तौर पर समझने के बाद हम फिर इसका हक अदा कर सकेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम तर्जमा शुरू करेंगे पारा 2 की पहली आयत सूरत अल बकरा 142 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير سيقول। दूसरे पारे का नाम है सयकूल। सासीन यकूल वो कहेंगे, अन करीब वो कहेंगे। आम नज़र से देखें तो ये नाम समझ नहीं आता, लेकिन जब अभी हम इन आयात को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को आने वाले फितनों से और प्रोपेगंडा जो होने वाला था पहले ही आगाह कर दिया। तो अन करीब वो कहेंगे, यानी अभी हुआ कुछ नहीं, ना किबला तब्दील हुआ और ना मुखालिफीन ने उस पर कोई रिएक्शन शो किया, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत ही अपने नबी से कि उन्होंने पहले से ही ये चीज़ बता दी कि अभी एक तब्दीली आने वाली है। और कमज़ोर ईमान वाले और खोटे दिल वाले तब्दीली को कबूल नहीं करते, बल्कि उसको बुनियाद बनाकर जल्दी से बाहर गलत से गलत चीज़ें मारूफ करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि हक की आवाज़ दब जाए किसी भी तरह से, हम जो भी इसमें कर सकें। पारे का मौजू बहुत ही हसास भी है और पहले पारे के मौजू यानी अधूरी इतात का फितना, इसको समझने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस वक्त मेरी नज़र में, देखिए मैं हर साल जब भी कुरान पाक का कोई थीम सामने रखती हूँ और फिर अल्लाह ताला की मदद तौफीक इस्तखारों के बाद, तो मैं उस मौजू को बुनियाद में रखकर कई बार उस पारे का अहाता करने की कोशिश करती हूँ। और आजकल तो ये जो टॉपिक चल रहा है इसके लिए तो मुझे एक और चीज़ देखनी थी, और वो क्या है कि मौजूदा मुसलमान की हालत क्या है, आज उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या हालात हैं। तो उन सब को सामने रखते हुए दूसरे पारे का मौजू लीजिएगा, उम्मत का जिम्मेदारी से गफलत का फितना। लफ्ज़ उम्मत उम से है, उम माँ को कहते हैं, जड़ को कहते हैं, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है ना वो उम है, इसी वजह से माँ को उम या उम्मी कहते हैं। तो लफ्ज़ उम्मत क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने पिछले पारे के आखिर में तज़किरा देखा और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआएं की, और ज़ुर्रियत में सिर्फ औलाद नहीं होती बल्कि आने वाली नस्लें होती हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये घर तो मैंने बना दिया तेरी तौफीक से, अब दो चीज़ें तू कर दे, नंबर एक कोई रसूल भेज, रब्बना वबस फीहिम रसूलम। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ तकरीबन 4000 साल के बाद पूरी होती दिखती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की सूरत में। दूसरी उनकी ख्वाहिश थी कि वारी ना मना सिका ना, ए अल्लाह हमें अब तरीक़ा इबादत भी सिखा, क्योंकि तीन ही चीज़ें चाहिए आज भी इस उम्मत को, नंबर एक मदरसा या दीन का मरकज, वो अल्लाह ने इब्राहिम से बनवा लिया था काबा की सूरत में। मदरसा हो उस्ताद ना हो तो चाहे आप बड़ी बड़ी मेहराबें लगा लें दिल नहीं लगेगा, उस्ताद दीन देने वाला मुअल्लिम सबसे कीमती कंपोनेंट है आज की इस उम्मत को बचाने के लिए। आज आपको मुझे उस्ताद तैयार करने हैं, आज आपको मुझे उस्ताद बनना है। कैसे? हर माँ उस्ताद बनेगी, हर बाप उस्ताद होगा, और इसी तरह हर इंसान अपने हर रूप में उस्ताद बनेगा। कब तक माएँ बच्चों को ले लेकर मदरसों में भागेंगी, और कब तक माएँ सिर्फ अलिफ बात आ के लिए मस्जिद में मौलवी साहब के पास बच्चे को भेजेंगी, ये काम माँ के थे। और बाकी जो बच्चों की तरबियत होनी है दीन के मुताबिक वो तो वैसे ही अमल से होती है। तो जब अमली तौर पर आपके इर्द गिर्द ऐसी मिसालें मौजूद हों कि जिनको देख कर पूछना ना पड़े, तो एक उम्मत बनती है। आज हम खुद को देखें तो हम उम्मते मुस्लिमा कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में हम एक भीड़ हैं, एक भेड़ चाल के पीछे चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी उम्मत तैयार की थी, चौथे पारे में हम उस पर बात करेंगे अल्लाह की तौफीक से। आज लफ्ज़ जिम्मेदारी को समझिए। लफ्ज़ जिम्मेदारी क्या है? जिम्मादारी, इससे मिलते हुए उर्दू में भी बहुत से लफ्ज़ हैं, और ये लफ्ज़ बजाते खुद उर्दू का भी लफ्ज़ है। जिमी कहते हैं उस गैर मुस्लिम को जो किसी मुसलमान मुल्क में जिज़िया देकर रहता है, यानी मिनोरिटीज़ कह लीजिए जो किसी भी मुस्लिम कंट्री में रहें, और गवर्नमेंट उनकी जान माल की हिफाजत करती है क्योंकि वो उनके कवानीन के पाबंद होते हैं। जिम्मेदारी क्या है? आपने एक लफ्ज़ सुना बचपन में, खानादारी। आप उसी को सामने लें, खाना कहते हैं घर को, दारीदार से। जिम्मेदार वो होता है, नंबर एक, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जिम्मेदारी वो बुनियादी चीज़ है जिसके बाद जवाबदेही होगी। ये जुमला बेस्ट है आपके मेरे इस लफ्ज़ को सीखने के लिए। जो खुद को जिम्मेदार कहे या जिसको जिम्मेदार बना दिया जाए और वो खुशी से उसको कबूल करे और उसका इजहार भी करे, उससे जवाबदेही ज़रूर होगी। आप राह चलते लोगों को नहीं पूछते। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप किसी को घर से निकलते हुए जिम्मेदारी दे आए कि देखो एक मेड थी, आप उसको कहते हैं कि बच्चा उधर सो रहा है, उसका ये फीडर भी रेडी कर देना, घर भी साफ कर देना और खाना भी थोड़ा सा तैयार कर देना। आप निकल गई, वापस आई, आप देखती हैं कि वो बच्चा जिसको सोता छोड़ गए थे वो तो बाहर गली में खेल रहा है, गेट के बाहर आया हुआ है। अंदर आए, घर फैला हुआ है। थोड़ा सा अंदर आए तो देखा मेड जो है वो आराम से सोफे पे सो रही है। मुझे बताइए आप उस मेड के साथ क्या करेंगे? ये है वो चीज़ जिसको आज मैंने आपने याद करना है और उम्मत इसको भूल गई। क्या आप यही गुस्सा और सख्ती अपनी नेबर की मेड से भी बरत सकते हैं कि मेरा बच्चा बाहर क्यों फिर रहा है? वो कहेगी मुझे क्या लगे, ये मेरा पैसेज गंदा क्यों है, मुझे क्या लगे। बस अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा पर एक जिम्मेदारी लगाई और आज हम अमूमी तौर पे भी, अल्लाह ताला मुझे आपको माफ़ करे, और ख़सूसी तौर पे भी कमा हक का हो इस जिम्मेदारी का हक अदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 10 सदियां, 1000 साल तक मुसलमान इस जिम्मेदारी से भरपूर तौर पे आगाह थे और उन्होंने इसको निभाया भी, तो पूरी दुनिया के नक्शे पे मुसलमान सूरज बन के चमके, पूरी दुनिया को सुकून भी दिया, इत्मीनान भी दिया, पीस भी दिया, प्रॉस्पेरिटी भी दी। जब मुसलमान इस जिम्मेदारी से ज़रा से पीछे हटे तो कह लीजिए कि वो तस्बीह का दाना खुल जाए तो मोती ज़मीन पे गिरते हैं। फिर कोई नहीं कह सकता कि कौन सा मोती किसके पांव के नीचे गया। दर्द से डूबा हुआ एक जुमला बोलने दीजिए, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तस्बीह के उन बिखरे हुए दानों की तरह हो गई कि जो जिसके पांव में आ जाए वो उसको रौंद दे, उस पे इल्ज़ाम लगा दे और जो भी उसका दिल चाहे वो कर दे, और हम उस खाली डोरी को लेके बैठे हुए हैं कि हम हैं ना नबी के उम्मती। आज जिम्मेदारी से गफलत है। अभी तक आपका जहन थोड़ा सा अलर्ट हो चुका है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि वो जिम्मेदारी क्या है? मेट को तो आपने जिम्मेदारी दी अपने बच्चे की टेक केयर की, उम्मते मुस्लिमा को किसकी जिम्मेदारी दी गई थी? तो ज़रा देखिएगा, उसका जिक्र है इस पारे की दूसरी ही आयत में, आयत 143 का एक हिस्सा, वकज़ालिका जालनाकुम वसतल्ली तकूनु शुहदा अलन्नास, और इसी तरह हमने तुमको उम्मते वसत बनाया ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर। वयकूनर रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह बने। उम्मते वसत बनाया गया था जिम्मेदारी की सूरत में, और ये कैसे होगा, क्या होगा, इसको समझने के लिए एक तो हमें इस पारे की एक आयत पे गौर करना है, लेकिन ये मफहूम हमें समझ आएगा पारा नंबर 4 में, इसलिए यहाँ इस पे हल्की सी बात करूँगी, बाकी चीज़ें आगे होंगी। अब ये शहादत हक क्या है और ज़िम्मेदारी क्या है, इसको समझते हैं एक हदीस से, इब्ने माजा की रिवायत है 4284 नंबर की, हज़रत अबू सईद खुदरी से ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़्यामत के दिन एक नबी आएगा और इसके साथ दो ही आदमी होंगे, यानी सिर्फ दो लोगों ने उसको माना, और एक नबी आएगा इसके साथ तीन आदमी होंगे और किसी नबी के साथ ज़्यादा लोग होंगे। इस नबी से पूछा जाएगा, क्या तुमने अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था? वो कहेगा जी हाँ। फिर इसकी कौम बुलाई जाएगी और पूछा जाएगा, क्या इसने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? यानी वेरिफिकेशन की जाएगी, हालांकि अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है। वो इनकार कर देंगे, वो कहेंगे नहीं। यानी देखिए उस वक्त नबी का क्या हाल होगा, ये हम सूरत निसा में पढ़ेंगे 5वें पारे में, क्या उस वक्त नबियों का हाल होगा कि जब सारी ज़िंदगी की मेहनतों के नतीजे में जो कोशिशें करके आए, वहाँ खड़े हो के उम्मत इनकार कर देंगी, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है। और यही चीज़ सूरत मुल्क में रोज़ रात को आप सुन के और पढ़ के सोते होंगे कि जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो पूछा जाएगा, लम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया, कोई वार्नर नहीं आया, कोई आगाह करने वाला नहीं आया? तो जवाब, भला क्यों नहीं आया था, लेकिन हम ही झूठे थे। तो लिहाजा नबी से पूछा जाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है? वो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोहब्बत से और उनकी उम्मत। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बुलाई जाएगी और कहा जाएगा, क्या इसने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेगी जी हाँ। इससे पूछा जाएगा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जवाब देगी, हमारे नबी ने हमको ये बताया कि रसूलों ने पैगाम पहुंचा दिया है, तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर नबी सल्लम ने फरमाया, यही अल्लाह ताला के कौल, व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूनु अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इसका मतलब है, क़्यामत के दिन जो सवाल जवाब होंगे, इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। तो क्या पता चला कि शहादत अलन्नास की गवाहियां हैं? ये कैसे है, ये भी हम जब इस आयत पे पहुंचते हैं एक आयत करने के बाद, तो इस पे बात करेंगे। ये कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क़्यामत के दिन उम्मत मुस्लिमा से पूछा जाएगा कि सुनाओ क्या करके आए हो दुनिया में। ये नहीं पूछा जाएगा कितने घर छोड़कर आए हो, कितनी कोठियाँ, कितने बंगले, कितने बैंक बैलेंस, तुम्हारे बेटे कितना पढ़ गए, तुम्हारी बेटियाँ कैसी, क्या हुआ, बल्कि वहाँ पूछा जाएगा, बताओ करके क्या आए हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे भी यही सवाल किया था कि जब सब जमा हो गए तो आपने बताया कि एक बात तो कहो, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, क्या मैंने हल बल्लग़्ता? तो सहाबा कराम ने उस पे बावाज़े बुलंद कहा, बल्लग़्ता व अद्दैता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कि आपने पैगाम पहुँचाया बल्कि आपने तो हक भी अदा कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आप दीदा हुई, गीली हुई तशक्कुर के एहसास से, और आपने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह गवाह रहना, अल्लाहुम अशहद, अल्लाहुम अशहद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतना एहसास था इस बात का कि अल्लाह ने मुझे जो काम दिया था वो मैंने किया कि नहीं। तभी तो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम था, अल्लाह के नबी अपने हिस्से का काम करके गए। ऐसे ही एक उस्ताद अपनी पूरी कोशिश करके जाता है, पूरे शऊर से पूरी क्लास को एक ही बात बता के जाता है, लेकिन फिर वो क्लास तीन हिस्सों में कैसे बढ़ती है, ये हम सूरत फातिर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि लोग पढ़ने लिखने के बावजूद भी तीन हिस्सों में क्यों बटते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। चूँकि आज के पारे में बहुत सारे अहकाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, यहाँ आप दूसरी बात पर आ जाइए। पहला पारा अमूमी तौर पर बनी इसराइल के गिर्द घूमा, और हमने शुरू में ये बात देख ली थी कि सूरत बकरा के दो हिस्से हैं, इसको सूरतुल उम्मतैन भी कहते हैं, दो उम्मतों की सूरत, और उनमें से एक वो है कि जो मुसलमान पहले थे और एक वो जो हम हैं। ये पारा इसलिए भी बहुत अहम है और आपकी मेरी खसूसी तवज्जो का मुंतजर है कि इसके सारे के सारे हुक्म मुसलमानों के लिए हैं। लिखिए, ये हिस्सा जो इस वक्त आपके सामने और मेरे सामने, बल्कि सूरत के एंड तक भी अगर आपको अभी से ही बता दूं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मुसलमानों से खिताब है। चार मजामीन बार बार आएंगे इस हिस्से में। लिखिए, इबादात से मुतल्लिक अहकामात पढ़ने वाले हैं, मुआमलात से मुतल्लिक अहकामात पढ़ने वाले हैं, जिहाद बिल माल यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह और जिहाद बिस सईफ यानी क़िताल फी सबीलिल्लाह। यानी यहाँ से अंत तक अब सूरत अल बकरा में ये चार चीज़ें आएंगी। और इस हिस्से की एक दूसरी खूबी लिख लीजिए ताकि आपका शौक और भी बढ़ जाए आगे से सुनने का, और वो क्या है कि यहाँ पांच तवील तरीन आयात आएंगी कुरान पाक की, बड़ी अहम और तवील आयतों में इसमें आएंगी, जिसमें एक आयत 164 है जिसको आयतुल आयात कहते हैं, कई आयतों वाली एक आयत। अल्लाह ताला ने इसमें कायनात की निशानियों को बुनियाद बनाकर हमें तौहीद सिखाई। फिर इसमें आयत बेरा आएगी 177 के, जिसमें दीन का जामे और मजमुई नुक्ता नज़र बयान होगा। फिर आयतुल इख्तलाफ आएगी कि इंसानों में इख्तलाफ क्यों होता है, आयत 213 है। वो लिखना चाहें लिखे, नहीं लिख सकते तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुनने में तवज्जो चाहिए आपकी। और फिर आयतुल कुर्सी, जिसको तमाम आयात कुरानी की सरदार कहा जाता है, 255 है। और आयत दैन, जो कुरान पाक की भी सबसे तवील आयत है, कर्ज के मामले के लिए हिदायत, वो 282 है। तो ये सूरत बकरा कोई आम बात नहीं है जो आप और मैं पढ़ रहे हैं। सहाबा कराम तो इसको 7-7 साल में पढ़ते थे, हम तो अपनी मजबूरी और वक्त की कमी की वजह से इसको जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। वो तो एक एक आयत पढ़कर उसका जवाब देते थे, उस पर गौर करते थे, उस पर अमल करते थे। तो अल्लाह ताला से ये बड़ी दुआ करने की ज़रूरत है कि मालिक तो हमें इन सारी चीज़ों का हक अदा करने की तौफीक दे। और आज इस बारे में अब देखेंगे कि कैसे इब्तदा में उम्मत को जिम्मेदारी का एहसास दिया गया, तब्दीली को कबूल करो इसका एहसास दिया गया, और उसके बाद फिर अहकाम देते देते आइली कवानीन यानी शौहर बीवी का रिश्ता, रिश्ते कहाँ करने, कैसे करने, मेयार क्या है, वो भी इस बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से तलाक़, इद्दत, रजात, ये सब करते करते एंड पे मौत के डर से भागने वाले बच नहीं सकते। तो मौजूदा हालात में क्रोनक से बचने के लिए हर मैयर लीजिए, हर ख्वाहिश पूरी कीजिए, लेकिन बचेंगे वही जिनको अल्लाह बचाएगा। और लिख लीजिए आज के लिए कोरोना का एक जुमला कि क्या लोग सिर्फ कोरोना से ही मरते हैं। बस जब ये नहीं था तो क्या मौतें नहीं होती थी, और क्या आजकल भी सारी मौतें इसी वजह से हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिल से मौत का डर निकाल कर मौत के बाद के लिए तैयारी करने की तौफीक दे। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए पूरे पारे के अंदर अमल के साथ जो चीज़ है वो क्या है, और इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने लिए एक दुआ करते हैं। اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب। अब इस वक्त बिल्कुल झुके हुए इंसान की तरह आमीन भी कहिए और अपने आप को लेकर चलिए कि अल्लाह जो तूने जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है उसका हक अदा करने की तौफीक दे। और ये जितनी चीज़ें इस एक दुआ में हम मांग रहे हैं इस पे आमीन कहिए और अपने और मेरे समेत इस पे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये सब अता फरमा दे। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे दीन में साबित कदमी और हिदायत में पुख्तगी का सवाल करता हूँ। दीन में साबित कदमी असल में मतलूब है, एंड तक जो साथ नहीं होते वो किसी जगह नहीं पहुँचते। और हिदायत में पुख्तगी से मुराद क्या, कि कच्ची पक्की हिदायत नहीं मांगनी कि अधूरी इताअत करते रहें, पूरी हिदायत चाहिए। और मैं तुझसे तेरी रहमत को वाजिब करने वाले और तेरी मगफरत को लाजिम करने वाले उमूर का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, मुझे ऐसे काम करा ले कि तेरी रहमत मुझ पर निछावर हो जाए और मेरी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। तो अल्लाह से हम भी दुआ कर रहे हैं, ख्याल अब अगली ज़िंदगी में बस नेकियां करनी है और गुनाहों से पीछे होना है। मैं तुझसे तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने और अच्छे अंदाज में इबादत करने का सवाल करता हूँ। अब तो ये सीख ही पा रहे हैं हम, हमारी इबादत में भी कमी थी, अभी भी नमाज पर थोड़ा सा गौर करते रहें ताकि हम दिन ब दिन अल्लाह का कुर्ब महसूस करें। मैं तुझसे सलामती दिल और सच्ची जुबान का सवाल करता हूँ। मैं तुझसे हर उस भलाई का सवाल करता हूँ जिसे तू जानता है, और तुझसे इन तमाम गुनाहों की बख्शिश का सवाल करता हूँ जो तेरे इल्म में है। बेशक तू पोशीदा बातों को खूब जानने वाला है। क्या पता चला कि ए मालिक, तू मेरे अंदर बाहर को जानता है। बशरी खताएं हैं कि मेरी सुस्तियां हैं कि मेरी कमजोरियां हैं। मुझे ये पता है कि मैं दूसरों से छुपा लूंगा, तुझसे नहीं छुपा सकता। तो इस दुआ को याद कीजिए, पिछले पारे की तरह इस पारे की भी झलकियां देखते हैं, हाइलाइट्स ऑफ दी जो आप कहेंगे ये वक्त हम क्यों जाया करते हैं, क्वेश्चन हो सकता है, जो जल्दी से पारा पूरा करके 2 घंटे में जाना चाहते हैं। तो देखिए, पारा 2 नहीं पौने 2 घंटे में पूरा होता है, जब अब सिर्फ रवां तर्जुमा और बीच में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों को छेड़ते जाएं। ये एक रस्मी अंदाज है पारा करने का दौरे कुरान में, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये बहुत लोग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको थोड़ा सुनना है, वो हमारे अपने पास पिछले तकरीबन 10 साल का दौरे कुरान मौजूद है, और उसमें दो तो छोड़िए 1.5 घंटे का पारा भी है, और इससे छोटा 1 घंटे का भी है, 15-15 मिनट का एक रुब है। तो आप वो सुन लीजिए, आप तरतीलुल कुरान सुनिए, तरावी के बाद 15-15 मिनट हर पारे को दिए थे 1 साल, तो वो सेट मौजूद है, ऐप पे भी है, वेबसाइट पे भी होगा, आप उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन हम जो ये आधा घंटा ऊपर लेते हैं, 2 से 2.5 घंटे पूरे, उसमें ये छोटी चीज़ें, यकीन कीजिए तर्जमा तो आप बाद में किसी भी जगह बैठ के आराम से पढ़ लें, लेकिन ये चीज़ें हैं असल में जो हर साल फिर हमें इस कुरान का एक एंगल समझाती हैं। और ये झलकियां जो मैं देती हूँ आपको इस वक्त ग्लिम्प्स, उसका फायदा क्या होता है कि कहीं गफलत की वजह से आप तर्जमा सुनते वक्त अगर थोड़ा सा सो भी जाए, तो ये झलकियों में से अपनी पसंद का टॉपिक याद आ जाए कि अच्छा ये इसमें, तो फिर इंशाल्लाह आप दोबारा सुनेंगे तो आपको मिलेगा। तमाम इंसानों के सामने हक की गवाही देना, इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह की किताब की तालीम लेना और देना। चंद सेकंड रुकूं इस पे, ये तो पैशन है मेरा, दिल करता है सब की छुरियां चाकू छुड़वा कर उनके हाथों में पारे पकड़वा दूं, टूल छुड़वा कर पारे पकड़वा दूं, बच्चों के खिलौने हटाकर उनके हाथों में प्यारी प्यारी कुरान की किताबें पकड़ा दूं। और ये करना पड़ेगा, मुझे बुरा ना कहिए तो मैं एक बात कह दूं, लॉकडाउन के दिनों में अगर हर मुसलमान मुल्क की हुकूमत, जिसमें हमारे अपने मुल्क भी आते हैं, ये नेकी का काम कर जाए कि लोगों को कहे घरों में बैठकर आप कुरान सीखिए, अल्लाह करे ये आवाज़ कहीं पहुंच जाए। आप जहाँ अपना हिस्सा डालना चाहते हैं हमसे ही रब्ता कर लीजिए, आपको जो फैसिलिटेट कर सके बिस्मिल्लाह के इसमें सीखो। मैं तो अक्सर एक मिसाल दिया करती हूँ कि 1 साल की छुट्टी लीजिए, विद पे नहीं मिलती तो अपने अखराजात कम कर लीजिए, कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर उसको रख लीजिए अपने सेविंग्स में, कि जिससे घर की रोज़ी रोटी चलती रहे, और कुरान की तालीम दीजिए। और ख़ास तौर पर यह बात मर्दों को फ़ायदा देगी, तो आजकल के इन लॉकडाउन के दिनों को आप अपने आप को असहाबुल इल्म में डालिए। देखिए कुरान आप पढ़ते हैं, यहाँ बात कुरान पढ़ने की नहीं है, इल्म लेने की है, और अल्लामा युअल्लिमु तालीम थोड़ा थोड़ा लेकर बैठना। इवन अगर ये जो आज इतना मुख्तसर तरीन सफ़र होता है हमारे सारे सेटों में, शायद एक बाज़ाब्ता हर साल जो सेट तैयार होता है वो यही है, ये भी बहुत तब्दीली लाता है। अगर हम 1 साल से 1.5 साल नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा सफ़र भी इंशाल्लाह होगा। तो ये लॉकडाउन के दिनों को आप क्या करें, कुरान टाइम बना लीजिए। किसको? यानी जो लॉकडाउन 14 डेज का है उसको अपने लिए कुरान टाइम बना लीजिए। फिर और आप बारे में सीखेंगे कि अपने और इंसानों के नफूस की पाकीजगी की कोशिश करनी है, यही है आपने मैंने सफाई का और तत्हीर का काम करना इंशाल्लाह। अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देना क्या होता है इसको हम देखेंगे 154 में इंशाल्लाह। अल्लाह से शदीद मोहब्बत करें तो जिंदगी कैसी हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि अल्लाह के बताए हुए हलाल हराम की पाबंदी करने वाले कितनी सुकून की जिंदगी बसर करते हैं, उनकी जिंदगी में बाहर कोई ग्लैमर ना भी दिखे लेकिन उनके दिल बड़े खुश होते हैं। फिर इसी तरह हम सीखेंगे कि नेकियों भरी जिंदगी गुजारना कैसे आसान होगा। फिर तकवा की जिंदगी इख्तियार करना ये किस हद तक कैसे मुमकिन है, और ये स्टेप्स में काम कैसे होता है। इसी तरह उस वक्त तक कोशिश करना है जब तक अल्लाह का दीन गालिब ना हो जाए, यानी गलबा इस्लाम और अल्लाह के इस दीन के जो जिम्मेदारी आपके मेरे कंधों पे है, इसको इंशाल्लाह करने की कोशिश कैसे की जाती है। और फिर आय 207 का नंबर तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि रज़ा इलाही की तलब में जान कैसे खपाई जाती है, यानी हमने सबने खप जाना है। दुआ करें पंजाबी जिनको आती है उनको भी समझ आएगी, उर्दू वालों को भी समझ आएगी कि हमने अल्लाह की रज़ा पाने के लिए खप जाना है। जान भी खपानी है, माल भी खपाना है कि डाई एम्प्टी। चंद जुमलों में एक मिसाल समझ लीजिए। कुछ माहरीन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया से जब एक एवरेज इंसान कब्र में डाल दिया जाता है, उस वक्त तक वो सिर्फ अपने जिस्म का या अपने ब्रेन का 5 से 10% यूज़ कर चुका होता है। बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जो 10 करेंगे, वरना आमतौर पर कहते हैं 5 से 6%। तो बाकी 95% कब्र में जाता है। आपने मैंने क्या करना है, अब इसी जुमले पे गौर करते हुए सुन लीजिए। अल्लाह की रजा की तलब में जान खपाते खपाते ब्रेन को खाली कर देना है। डाई एम्प्टी क्या है, खाली होके मरना है। कई लोग खाना पकाते हैं और आधे से ज्यादा बिन में जाता है। कई टमाटर फ्रीजर में या फ्रिज में दब के कहीं पीछे ही खराब हो जाते हैं, तो उनको जब बिन में डालें तो उस वक्त सोचिए, क्या मैं कब्र में डाल दी जाऊंगी और मेरी सारी सलाहियतों में से सिर्फ एक कोना बाहर आया। तो बस आज से नियत करें अपनी अपनी स्किल्स को अल्लाह की राह में डालने की। फिर आगे हम सीखेंगे कि जन्नत जाने की तैयारी कैसे की जाती है। फिर अल्लाह की राह में घर बार छोड़ना, जिहाद करना है, ये कैसे होगा, यानी जिहाद का भी एक रंग हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। और फिर सबसे बढ़कर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना और माशरे के अफराद को झगड़ों से पाक ज़िंदगी सिखाने की कोशिश करना। तो आप देख रहे हैं कितना कंपाउंड पारा है। इतने बड़े बड़े टारगेट लेके पढ़ने वाले हैं, तो फिर सोचिए कि उसके लिए हमारी कितनी तवज्जो की ज़रूरत है। लेट कर सुनना छोड़ दीजिए, टेक लगाकर सुनना छोड़ दीजिए। बेस्ट थिंग और वो क्या है कि डाइनिंग टेबल और चेयर, यानी अगर आपके घर में कंप्यूटर चेयर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ऐसा मेज़ जिसके आगे वो टेबल रखा हो जो आपके कद के बराबर हो, तो ये बेस्ट चीज़ है टीचिंग और लर्निंग के लिए। इस वक्त भी अगर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर या अपनी कंप्यूटर डेस्क पे सही पोजीशन में बैठे हैं, और आप देखेंगे कि आपको वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होगा, नोट्स भी भरपूर ले लेंगे और बाकी चीज़ें भी अल्लाह की रहमत और उसके मुताबिक आपकी होंगी। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो अभी तक कहीं, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी इस बारे में से हम सीखने वाले हैं। वो क्या है कि हदूद इलाही पर कायम कैसे रहा जाता है, बाउंड्रीज के करीब नहीं जाना, खशियत इलाही के साथ ज़िंदगी गुजारना कि अल्लाह सुबहानहू तआला को सब खबर है। फिर इसी तरह हम सीखेंगे कि नमाज़ों की हिफाजत करनी है, उनकी निगहदाश्त करनी है। वॉच योर प्रेयर्स प्लीज। अल्लाह के आगे फरमाबरदार गुलामों की तरह हाजिर रहना है, इससे क्या मुराद है, और अल्लाह की राह में जान माल से जिहाद करना। और फिर हम इस पारे से सब्र करना भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और ये पारा इस सूरत का आयत 142 से लेकर 242 का हिस्सा कवर करेगा। ये भी याद दहानी रखिए, आयतों के नंबर नाम याद होने चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं पारे को तर्जमे के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासि मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिमु अल्लती कानू अलैहा। अन करीब ये लोग कहेंगे कि जिस क़िबले पर ये थे, इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, और वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। पारे का आगाज बड़ा खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब नमाज अदा करते थे तो खाना काबा की तरफ जब मुंह करते तो खुद ब खुद बैतुल मकदस की तरफ भी मुंह हो जाता। आप एक छोटा सा मैप बना लीजिए अपने माइंड में। मक्का मुकरमा पहले आता है, सेम सड़क पे चलते जाएं तो मदीना आएगा, और फिर उसी पे आगे कंटिन्यू करें तो बैतुल मकदस यानी मुल्क शाम का इलाका आता है। तो इस्तकबाले क़िबला तय हो जाता था, और हर नबी का क़िबला शुरू से लेके क़यामत तक इंशाल्लाह खाना काबा ही रहेगा। मदीना के लोग यहूद के ज़ेरे असर थे और यहूद बैतुल मकदस की तरफ मुंह करते थे। तो जिसको आप कह सकते हैं कि अंसार बाद में जो लोग बने, वो शुरू से लेकर अपनी ज़िंदगी में बैतुल मकदस के आदी थे, उसको एक इबादत का मरकज समझते हुए। और मुसलमान जो मक्का में रहते थे, उनकी मोहब्बत और हमदर्दियाँ मक्का में रहते हुए बैतुल्ला से थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिकमतें दी थी, उसकी वजह से आपने मक्का में तो बैतुल्ला ही की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, क्योंकि यही आपका जज्बाती किबला भी था, रूहानी भी था। और याद रखिए, हम उसी चीज़ के पास बैठते हैं, हम उसी इंसान के पास बैठते हैं जिससे हमारी جذباتی انسیت بھی ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مکہ میں کوئی ایشو نہیں بنا، حالانکہ باقاعدہ نماز اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز ہر دور میں اپنے وقت کے مطابق مختلف چیزوں میں رہی تھی۔ تو خیر ہوا کیا کہ مکہ سے جب اب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک سوال اٹھا کہ مسلمان کس قبلے کی طرف منہ کریں گے۔ دو چوائسز موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سٹبن ہوتے ہوئے، اپنی ہی عادت کا نام لیتے ہوئے، اور اپنی جذباتی وابستگی کا نام لے کے کیا کریں، شروع سے یہ نام دیکھا ہے تو اور اب کیا کریں، آپ واپس مکہ کی طرف منہ کر لیتے۔ اب ہوتا کیا، ذرا سا اگر آپ اس کو انجوائے کریں، اور میں بہت ہی زیادہ عادی ہوں اپنے لیکچرز کے اندر سیرت کو کوٹ کرنے کی، کیونکہ سیرت سے کاٹ دیں گے نا تو قرآن کا ایک بڑا حصہ تو آپ کو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا، صورتوں کی صورتیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت نیوٹرل معتدل انسان ہوتے ہوئے، اور ایک ایسا دیندار جو کسی جگہ گیا تو ایک دم اپنے آپ کو بڑا کر کے اور لوگوں کو غلط کہتا ہوا، لوگوں کو ایسا میسج نہیں دیتا کہ جو لوگ پہلے سے دین کا کام کر رہے تھے وہ سارے غلط تھے اور تم سب میرے ساتھ جڑو۔ آپ نے یہود کو مائل کرتے ہوئے اور انصار مدینہ جو کہ بچپن سے ہی جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کو ساتھ لیتے ہوئے کچھ مہینے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے تبلیغ کا کہ پہلے لوگوں کو مانوس کیجئے، جب ان کے دل آپ سے جڑ جائیں گے نا تو بس پھر وہ سب کام آپ کے لیے ہی کریں گے۔ لیکن دل خوش نہیں تھا، اور دل کیسے خوش ہو کہ خانہ کعبہ تو پیچھے ہو رہا ہے، آج بھی کچھ بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ قرآن پاک کہیں رکھا اور بچے اس سے پاس سے گزرے تو کہتی ہیں قرآن کو پیچھا نہ کرو۔ تو حقیقت ہے کہ انسان کے دل میں ان ریچولز کے لیے محبت تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ نے بغیر کہے کچھ کیا کیا، وہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں سیقول میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، جب وہ وقت آ گیا جب اللہ اپنے نبی کی خواہش پوری کرے اور آپ کی صرف نگاہوں سے آسمان کو دیکھنا قبول کرنے والا تھا، تو یہ آیت اتار دی کہ دیکھیے ابھی ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تو کچھ لوگ صفاحت کا کردار ادا کریں گے۔ تو صفحا کون ہے؟ ریئیکشنری، ایموشنل، لکھیے ایک جملہ، تبدیلی کو قبول کیجیے۔ اور کرونا وائرس کے دنوں میں یہ جو دن بدن اور خاص طور پہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوئے کتنی تبدیلیاں آئیں، میں اکثر خود سوچتی ہوں کہ اب لوگوں کے لیے چینج کو ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہوگا۔ فلائٹس کینسل ہو گئیں، کچھ نہیں کر سکے، پروگرامز کینسل ہوئے، شادیاں کینسل ہوئی، تو لفظ کینسل بہت بڑا لگتا تھا کبھی، اب چھوٹا ہے۔ تو زندگی میں فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت اور ضرورت اور حالات کے مطابق اکاموڈیٹ کیجئے، یعنی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اکاموڈیٹ کرنا سیکھیں۔ کچھ لوگ اتنے سٹبن ہوتے ہیں پتھر پہ لکیر کی طرح، اور وہ خام خواہی ہر جگہ ایک نون کا نقطہ بنے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ آپ نے بحثوں میں نہیں پڑھنا، وہ جو کہیں گے ذرا سا خاموش ہوتے رہیے، چند دن کے ریئیکشن کے بعد باتیں چلی جائیں گی، اور اگر وہ پوچھے یہ کیسا دین ہے، کبھی ادھر کا قبلہ کبھی ادھر کا، تو کہنا للہ المشرق والمغرب، قبلہ ادھر ہی ہے جدھر تمہاری توجہ ہے۔ اب آگے دیکھیے اگلی آیت جو اس وقت ہماری تھیم آیت میں سے ہے، وہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلے پر تم پہلے تھے۔ اس سے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابے دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ہم اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگر اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی वो तो इसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है, खबरदार आप शक करने वालों में न होना। ये था किबला तब्दीली का पूरा वाक़या भी और उससे अखज़ शुदा मसाइल भी। अल्लाह ने पहले से वॉर्न कर दिया था और वो हुआ, तो उस पर जो कुछ रिएक्शन था उसी के बीच में आप देख रहे हैं कि आयत 143 में उम्मत को एक जिम्मेदारी दी गई। तो नोट कीजिए, शहादत की जिम्मेदारी उम्मत के कंधों पर। महसूस करते हैं कितने लोग अपने कंधों को बोझल महसूस कर रहे हैं? वी फील बर्डन, क्योंकि जिम्मेदारी के लिए सबसे पहली चीज जो शर्त है वो कबूलियत है। जो जिम्मेदारी कबूल नहीं करता वो कभी उसको निभा नहीं सकता। आप आज तक अपने शौहर की जरूरियात क्यों पूरी करते हैं? खाने पीने, कपड़े धोने, घर की सुथराई से लेकर एक एक चीज, क्योंकि आपने शादी के मौके पे कबूल किया था। किसी ऐसी लड़की का तसव्वुर में लाइए चेहरा कि जो निकाह के वक्त दिल से तो कबूल ना करे लेकिन सिर्फ घर वालों के प्रेशर पे साइन कर दे, क्या वो शौहर को खुश रखेगी? बस इसी से समझ लीजिए, अल्लाह ने शहादत की जिम्मेदारी उम्मत के कंधों पर डाली। कौल, अमल और इज्तिमाई जिद्दोजहद के जरिए शहादत देनी है। यानी आपका मेरा काम क्या है कि जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ा, चाहे हमारे माँ बाप के जरिए पढ़ा क्योंकि मुसलमान थे दोनों, चाहे हमारे एक कान में अजान दे दी गई और दूसरे में इकामत कह दी गई, हमारा अकीका कर दी गई, जैसे भी हुआ, लेकिन कई लोग आज महरूम हैं। और यहां मैं जो पहले से सुनने वाले उनको एक बारीक नुक्ता बताऊं जो मैंने कभी पिछले सालों में नहीं बताया। इस जगह शहादत की बात है, कलमा पढ़ा है तो दूसरों तक पहुंचो। चौथे पारे में जब ये बात आएगी ना तो वहां अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की है। जिनको बात का फर्क समझ आ गया वो तो झूम गए होंगे, और जिनको समझ नहीं आई उनके लिए मैं दो जुमले बोल देती हूँ कि यहाँ सबसे पहली जिम्मेदारी जो उम्मते मुस्लिमा, और बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए उम्मते मोहम्मदिया, क्योंकि हम अपने नबी के साथ ताल्लुक भी महसूस करते हैं मगर कौन सा, सिफारिश का, और आपके हाथ से हौज़े कौसर का पानी पीने का और आपको जन्नत में जाकर देखने का, वो भी मिलेगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से कुछ महीने पहले जो जिम्मेदारी आपके मेरे तक पहुंचाई थी वो ये थी कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को सिर्फ अपने घर तक न रखना, अपने बच्चों से लेकर खानदान से लेकर गली मोहल्ला, घर के मुलाजिम, मोहल्ला फिर शहर फिर मुल्क और मुल्क से ऊपर जाकर इस ग्लोब तक जहां अल्लाह तुम्हें पहुंचा दे, तुमने ये गवाही देनी है। और मैं शऊर से चंद जुमले बोलती हूँ। अगर आज इस वक्त मैं यूके में हूँ तो मेरा काम क्या है कि मैं यूके में अपने इर्द गिर्द वालों तक और आज नेट के जरिए जहां तक मैं बात पहुंचा सकूं इस शहादत की गवाही को आम करूं। अल्लाह मुझे नॉर्वे क्यों लाया? ताकि मुझे शहादत हक की गवाहियां देनी है। और मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं तो अल्लाह के आगे सर सजदों में रख के उठाने को दिल नहीं चाहता, कि जितनी जगहों पे अल्लाह ने मोहरें लगवा दी ये अल्लाह मेरे हक में गवाही बना दे, मेरे लिए ये मेरे खिलाफ ना हो, क्योंकि या तो गवाही आपके हक में होती है या आपके खिलाफ होती है। तो इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। आपके घर की मेट्स अगर वो गैर मुस्लिम है, अपने कॉल से, अपने अमल से, और फिर उस पर कोशिश कीजिए, उनको दिए लिए उनकी तालीफ़ कल्ब कीजिए, उनको इस्लाम की करीब कीजिए। आपकी दोस्तें और ख़ास तौर पर जो हम वेस्ट में रहते हैं इनकी तो बड़ी सख्त पूछ होने वाली है, मौजू बड़ा सख्त है, कोशिश में हूँ कि इतनी सख्ती की बात ना हो। थोड़ा साथ लीजिए, बाकी बातें आगे जाके हम करेंगे, लेकिन पहले लोगों को अल्लाह की पहचान दीजिए। और जिस दुनिया के हिस्सों में आज हम मुसलमान जीते हैं वहां तो लादीनियत है, आज के दौर का तो फैशन है एथीज्म, देर इज नो गॉड, देर इज नो गॉड। वो कहते हैं वी डोंट ट्रस्ट इन गॉड, तो फिर क्या करें? आप उनको कायनात पे गौर कराइए। इस वक्त गौर कीजिए जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ, कि यहाँ इस्लाम की बात नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस मजमूए जिसको हम कलमे तैयबा कहते हैं उसकी बात है। फिर आप देखिए कि किस तरीके से उम्मते वसत का लकब दिया गया, हाईलाइट कर सकते हैं आप उम्मतम वसतन। तो वसत का लफ्ज़ तीन मानों में आता है अरबी डिक्शनरी में, अगर आप देखें, मोतदिल यानी बैलेंस्ड, वास्ता यानी इन बिटवीन, और तीसरा बेहतरीन, दी बेस्ट। उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने उम्मते वसत का टाइटल दिया। हकीकत है कि ये एक ओहदा नहीं है, यानी आपको कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा जिस पे आप खड़े हो गए और क्राउन लगा दिया गया और आपके शोल्डर्स पे कुछ बैजेस लगा दिए गए, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है और असरे हाजर यानी दौरे हाजर के मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज और फितना है। और सबसे बड़ा चैलेंज और फितना क्या है, मैं जिस चीज़ पे बहुत ही दर्द महसूस करती हूँ, अक्सरियत को पता भी नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकें तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। राह चलते यानी जस्ट डे टू डे लाइफ में आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, कभी किसी गली से गुजरते हैं, किसी शादी में सब जो लोग मौजूद हैं उनको चूज़ कीजिए, दोस्तों के हिस्से में कर ले, और कोई पहले से मूड बनाइएगा नहीं दीन का, या ऐसे ही पूछिए, ये बताइए कि मुसलमान होने का तकाजा क्या है, यानी बींग अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या है। सबसे बड़ी बात जो वो कहेंगे, देखिए नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, सदका दें, हमारी तो लिस्टों में भी ये नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम पे रहम करे। तो अल्लाह ने उम्मत वसत कैसे बनाया कि तुम बैलेंस्ड हो, हमारे दीन की हर चीज़ में बैलेंस है। आप देखिए कि अफरात और तफरीत से पाक उम्मत है, पिछली कौमों में इतना बिगाड़ आ गया था कि औरत को बीमारी के दिनों में बिल्कुल अछूत समझते थे, दूसरी तरफ इतना बड़ा कि वो भी हर ताल्लुक कायम किया जिसकी इजाज़त नहीं थी। अल्लाह क्या कहता है वो इसी बारे में हम एडन पे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हमारा दीन मोतदल है, दीन दुनिया भी रखो, दीन भी रखो दुनिया भी, हकूकुल्ला पूरे करो तो हकूकुल इबाद भी करो। इसी तरह से वास्ता कैसे है, यहाँ मुझे दो जुमले बोलने की इजाज़त दे जाए, और वो क्या है कि उम्मते मुस्लिमा रिसालत की इस कड़ी में वो गोल्डन चेन है जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनसे नबी सल्लम तक पैगाम पहुंचा और उन्होंने दुनिया को पहुंचाया, उम्मते मुस्लिमा इसमें एक इजाफा हो गया। देखिए वही का तार कहाँ से शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने जिब्राईल के जरिए कल्बे मोहम्मद पे उतारा, और कल्बे मोहम्मद से जुबाने मोहम्मद और अमले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में जहाँ तक पहुँचा, बाद में आपके असहाब के जरिए पूरी दुनिया में जहाँ तक उस दौर तक पहुँच सका। अब आप और मैं हैं जो उनके अलावा बाकी हिस्सों तक पहुँचाएंगे, गोया कि आपको मुझे एक गोल्डन चेन में डाल दिया गया। किसी को कहा जाए ना कि आप हमारे ऊपर वाले ग्रुप में आ जाएं, आप अंसारुल्लाह थे तो अब जिम्मेदार बन जाएं, ऑनर लगेगी, ठीक है मैं मानती हूँ जिम्मेदारी, लेकिन खुशी अच्छा हमसे मशवरे किए जाएंगे, हम आपकी शुरा में हैं, हमेशा खुशी होती है, लेकिन अगर निभाएं नहीं तो याद रखिए कि अल्लाह देता है तो फिर ले भी लेता है। तो आप और मैं वास्ता हैं, वी आर इन बिटवीन पीपल एंड अल्लाह सुबहाना ताला, और बेहतरीन तो हैं, करना क्या है कि बेहतरीन काम करें। कैसे बेहतरीन है ये सूरत आले इमरान में हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर इंशाल्लाह ताला, जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। और मज़े की बात जो शायद आपने आज तक फिर ना महसूस की हो, आयत का नंबर क्या देखिए, 143। सूरत बकरा की टोटल आयतें कितनी हैं, 286, 286 डिवाइडेड बाई 2, 143। बहुत ही प्यारा नुक्ता जो उलमा ने रख दिया, और वो क्या है कि जिस आयत में उम्मत को दरमियानी उम्मत करार दिया वो सूरत के बिल्कुल दरमियान की आयत में रख दिया, ये है मिरेकल। अल्लाह ने इस कुरान को एक समंदर की तरह बना दिया, जितनी गहराई में जाएंगे उतने मोती चुनेंगे। तो सवाल पैदा होता है कि फिर अब मैं और आप क्या इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं, इसका नुस्खा क्या है। मैं यानी आपको सिर्फ एक सिरा पकड़ा के आगे जाना चाह रही हूँ, बाकी दुआ कर दूंगी कि अल्लाह ताला आपका फहम खोल दे और आप आगे से आगे आगे से आगे बढ़ते जाए। तो लिखिए, हर नेमत एक जिम्मेदारी है, जब हम हर नेमत को जिम्मेदारी समझेंगे तब ही उसका हक अदा करेंगे। हम नेमत को क्या कहते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट मिल गया। चंद जुमले लिखिए, मेरी औलाद मेरी जिम्मेदारी, मेरा इल्म मेरी जिम्मेदारी, मेरा माल मेरी जिम्मेदारी, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवानी मेरी जिम्मेदारी, मेरा इंटेलेक्ट मेरा नॉलेज जिम्मेदारी है, और सबसे बढ़ के जो मौजू है कि मेरा उम्मते मुस्लिमा में से होना एक नेमत है। अब जब आपने इस उम्मते मुस्लिमा का एक फर्द होने को नेमत समझा तो नेमत इज इक्वल टू जिम्मेदारी, और अल्लाह ताला अपनी तरफ का एक वक्त कजाली का जाल ना कुम, किसी और ने ये आपको बैज नहीं दिया। देखिए बड़ी बात होती है, कोई बड़ा बंदा आपको कहे ना चलिए जी आज से आपको ओहदा दिया जाता है, ये आज आपको जिम्मेदारी दी जाती है, लोग कहते हैं हाय उन्होंने मुझे खुद से कहा, उन्होंने मुझे ऐड किया, तो क्या आप और मैं सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी और उम्मत मुस्लिमा की कह लीजिए क्रोनेशन सेरेमनी हो रही है, रस्म हो रही है, तब्दीली है, जिसको आप कहते हैं कि किसी की बहुत बड़ी सेरेमनी है कि उसको ग्रेजुएट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ काम दिए जाते हैं, जरा सा महसूस कीजिए। रिसालत की जिम्मेदारी रसूल से हटाकर मेरे कंधों पर डाल दी गई। अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लीजिए, और ये आप कब लेंगे, जब आप ये कहेंगे ये सिर्फ मैंने करना है। हम जब मैं से हम पे आते हैं ना, तो फिर वही बात होती है कि एवरीबॉडी थिंक समवन विल डू एंड नन हैज डन। सबने सोचा कोई तो कर लेगा और एंड पे किसी ने नहीं किया। हम एक भीड़ में निकलते हैं, और लिखिए यहां बात, क्यामत के दिन हमारा इंफरादी मुहासबा भी और इज्तमाई भी है। हम पूरे भेड़ से नहीं निकल जाएंगे, आ जाओ सारे उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अच्छा तुम नबी सल्लम को मानते थे, कलमा सुनाओ, हम पहाड़ों की तरह वहां कलमा पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर कहा हो जाएगा चलो भी पीछे हो जाओ, इस ग्रुप पर जाने दो। ऐसा नहीं होगा। कुरान में इसी में आप दलाल लेंगे, आगे जाकर एक एक से पूछा जाएगा कि माँ होने के नाते क्या किया और उम्मतिया होने के नाते क्या किया। तो हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, आपका इल्म इम्तिहान का पर्चा, आपका माल, आपका घर, आपका इंटेलेक्ट इम्तिहान के पर्चे हैं, और आपका मेरा मुसलमान होना इम्तिहान का पर्चा है। और सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और फिर उस दिन तुम नेमतों के बारे में पूछे जाओगे। तो यहाँ वही बात कही गई कि उस दिन जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुमको औलाद दी थी, तुमने उनको किन कामों में लगा दिया? मैंने तुमको माल दिया था, तुमने उनको किन चीजों पे खर्च कर दिया? मैंने तुम्हें घर दिया, तुमने घर का हाल क्या बना दिया? मैंने तुम्हें वक्त दिया? अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी रिवायत, अल्लाह तजूल कदमन इब्ने आदम इन दि रब्बी ही हत्ता युसअलुन्हु खमसा। आदम का बेटा क्यामत के दिन मैदाने हशर में कदम भी हिला नहीं सकेगा जब तक उससे पांच चीजों का सवाल न कर लिया जाए, जिसमें पहली चीज उम्र ही फी मा अफना हो, जिंदगी कहाँ गुजारी, अन शबाब ही फी मा अबला हो, जवानी कहाँ पुरानी की, और अन माली ही मिनई नक्त सबहू, माल कहाँ से कमाया, मिनई नान फाकू, और कहाँ खर्च किया, और मा जामिला बीमा अल्लामा। जो इल्म हो गया, जो बात समझ आ गई, उस पर अमल कितना किया। अब हम अपना इम्तिहान का पर्चा सामने खुला देखें, फिर तैयारी ना करें, कितनी ना समझी की बात है। हकीकत है, जिनको नहीं पढ़ना होता उनको पर्चा मिल भी जाए तो नहीं पढ़ते, वो कहते हैं खुशफहमियों में ऐसे ही चले जाएंगे। तो दो नेमतें जो अल्लाह ने हमें कसरत से दी, और हम कसरत से उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, उसमें एक सेहत है और एक वक्त है। अल्लाह ने हमें उम्मत वसत बनाया, ये नेमत थी, हमने इसकी नाकदरी कैसे की, हम अपने लाइफस्टाइल से देख सकते हैं। आज एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम के लाइफस्टाइल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और दरमियानी उम्मत इसलिए भी कि अल मगदूब और अद्दालीन के दरमियान में है, इल्म और अमल का मजमुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि चलिए ये बात थोड़ी समझ तो आने लग गई, ये बताइए कि ली तगुन शुहदा कैसे गवाह बने, तरीका क्या है? तो पहली बात है कि जिन तक पहुंचाएंगे, कुछ से कॉल से और कुछ से अमल से। दूर वालों को कॉल से बताइए, बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, बोला वो आगे पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, लिख के दीजिए, और करीब वाले जिनका आपसे वास्ता पड़ जाए उनको अपने अमल से दिखाइए। हम मुसलमानों को ये जिम्मेदारी हर मुमकिन तौर पे अदा करनी है। याद रखिएगा कि जितना बड़ा इनाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आपका मेरा 5-6 फुट का ये जिस्म इस्लाम की मुंह बोलती तस्वीर बन जाए, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये मिसाल अगर आपके मेरे ऊपर बन जाए तो उसकी रहमत हो जाएगी आपके मेरे ऊपर, और अल्लाह ताला आपको मुझे इस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि जब ये आयत उतरी तो सहाबा के लिए ये आयत फितना कैसे बनती है, जिम्मेदारी कैसे बनती है। मुहाजिर सहाबा जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए, हिजरत उनके लिए एक आजमाइश थी, यहाँ फितना बमानी आजमाइश लिखिए। घर बार छोड़ा, कारोबार छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, ये आसान नहीं होता। कह लीजिए कि मक्का से अल्लाह के नबी सल्लम के साथ आने वाले 100 कुछ सहाबा तो इम्तिहान के पर्चे हल करके पास हो चुके थे, वो फेल नहीं हुए, क्योंकि वही अपना घर बार माल छोड़ के अल्लाह के दीन को सर्व करता है जिसको ये जिम्मेदारी याद होती है, और इसकी ऑनर को भी और इसकी जवाबदेही को भी महसूस करता है। किबले की तब्दीली असल में मदीना में रहने वाले अंसार के लिए इम्तिहान थी, उनके लिए फितना थी। और वो कैसे थी कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि क्या ये भी दिल से इस नबी को मान चुके हैं, उनके लिए तब्दीली किबला आजमाइश क्यों बनी? वो पहले से मदीना में रहते हुए बैतुल मकदस की सुनते थे। बिल्कुल आज के दौर में ऐसे समझिए कि कुछ लोग जो दीन बाकायदा सीखते तो नहीं है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई बाजी पढ़ाती हैं, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से वहां कोई ब्रांच है, वो उसी के यूज टू होते हैं। अब वहां अल्लाह किसी और को भेज दे। मदीना में यहूद मदीना ने एक बहुत मुकाम हासिल किया हुआ था। दीन दुनिया के एतबार से वो मदीना के लोगों में बड़े मारूफ थे, तो कोई छोटे मोटे मसले पूछने होते उनके पास चले जाते, और मरूबियत भी थी। अल्लाह के नबी सल्लम का मदीना में आना, कह लीजिए कि अंधेरी रात में जलते हुए एक नाइट बल्ब के मुकाबले में सूरज का आना था। कल तक लोग उस नाइट बल्ब से फायदा उठा रहे थे। रात को देखिए जो बल्ब जलता है ना, थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, लेकिन अगर आप बंद करना भूल जाएं तो सूरज की रोशनी में दिखता भी नहीं कि जल रहा है। यही होता है जो लोग थोड़ा थोड़ा दीन का काम कर रहे होते हैं, जब उनके सामने कोई एक बड़ी चीज आती है तो वो उसके अंदर जम हो जाते हैं। तो सहाबा में से बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आए, तो ये इम्तिहान था कि क्या ये रिवायती दीन के पैरोकार हैं, क्या अभी भी इनके दिल में वो पुरानी निस्बतें हैं कि ये अल्लाह के नबी के किबले की तब्दीली के हुक्म पे ही अपने आप को बदलते हैं। और सहाबा सब उसमें कामयाब हुए। नमाज के दौरान जो हुक्म मिला और आपने इस तरह से रुख बदला कि औरतों की सफ़े मर्दों में और मर्दों की औरतों में चले, यानी पूरी की पूरी 180 की कह लीजिए कि चेंज थी, लेकिन कोई शोर नहीं उठा, कोई फितना नहीं उठा, कोई एक दूसरे को कुछ से कुछ कहना नहीं उठा। तो ये असल में इम्तिहान होता है। आपकी मेरी जिंदगी के किबले भी बदलते हैं, शोर बड़े उठेंगे, आपके हाल हुलिये बदलते हैं, आपकी ज़राए मुआश बदलती है, आपके बिजनेस चेंज होने लगते हैं, आप घर बेचने लग जाते हैं, आपके इर्द गिर्द वाले शोर करेंगे, क्या हो गया, कोई नया दीन सीख आए हो? तो आपका मेरा इम्तिहान क्या है, किस खुशी से इसको आपने मैंने कबूल करना है। अब सिचुएशन थी कि मदीना बीच में है, तो साउथ में काबा है, तो नॉर्थ में बैतुल मकदस है, तो अल्लाह ने अंसार का इम्तिहान लिया और वो इसमें पूरे उतरे। हत्ता कि एक शख्स ने आपके साथ नमाज अदा की और वहां से उठकर दूसरी बस्ती में गया जहां अभी नमाज हो रही थी, एक आवाज लगाई, लोगों मैं गवाही देता हूं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज अदा करके आया हूं। बस इस बात के सुनने की देर थी, दौराने नमाज उन्होंने भी तब्दीलियां की। असल ये बात है, पहले सादिक और अमीन का लकब लीजिए, फिर लोग आपकी दावत को लेंगे। अल्लाह के नबी ने अपना जो मुकाम मक्का में बना लिया था, 40 साल की उम्र तक वो सादिक और अमीन था। इसीलिए तो फिर लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप झूठ बोलेंगे। और इस वाक्य से देख लीजिए कि सहाबा में से कोई झूठ नहीं बोलता था, वरना बाद में कोई कहते हो अरे आज तो यकम अप्रैल था, मैं तो अप्रैल फूल कर रहा था। तो आपका किरदार पुख्ता हो, करेक्टर बिल्डिंग कीजिए, झूठ ना बोलें, दूसरों को धोखा ना दें, तो इंशाल्लाह लोग आपकी जुबान से भी शहादत की गवाहियां लेंगे और आपके अमल से। और आखिरी चीज़ यह कि हमारे लिए फितना और कामयाबी का दारोमदार क्यों है? ये उम्मते वसत का किरदार ही नहीं इस वक्त अदा किया जिसकी शामत हर तरफ से हमारे ऊपर है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इस बात को आसान कर दे और इसके ऊपर आप और मैं अपने आप को इस तरह जमा लें कि इसके बाद फिर हमारा बच्चा बच्चा इस पैगाम के साथ दुनिया में जिए कि हमने अल्लाह का नाम बुलंद करना है। फिर इसमें हमने देखा कि अल्लाह के नबी की इस बात के दौरान में जो यहूद का एक रवैया था कि या रिफू ना हु कमा या रिफू ना अब ना अहम, इसका भी तذکرہ हुआ है। कैसे पहचानते थे? 5 चीजों की तरफ इसकी निस्बत जाती है। यानी अगर आप पूछते हैं तो वो किसको पहचानते थे? अपने बेटों की तरह। और याद रखिए कि बेटों को पहचानना माओं की क्या बापों की भी आदत होती है। आप औलाद को उसकी खुशबू से पहचानने लगते हैं, दरवाजा खुलने के अंदाज से पहचानते हैं, चाबी रखने के अंदाज से पहचानते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के अंदाज से पता चलता है कि ये छोटा आया कि बड़ा आया। क्या क्लासरूम में बैठी माँ बेबी रूम से आती आवाज से पहचानती नहीं ये मेरा बच्चा? तो किसको पहचानना लेकिन ना माना? नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दिल मान चुके थे कि ये वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में आया था। इसी तरह इस शरीयत इस्लाम को पहचानते थे कि ये पिछली ही शरीयत की कंटिन्यूएशन है। खाना काबा को पहचान चुके थे कि ये किबला बनेगा, और अल्लाह को पहचान चुके थे। और सबसे बड़ी बात कि उनकी किताबों में ये बात थी कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा, तो इस तब्दीली को पहचान चुके थे। लेकिन जब दिल में तासुब होता है, हसद होता है, एनवी होती है, तो लोग सच को सच मान के, दिल मानते हैं ये चीज़ सच है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि ये हमारे गिरोह और हमारी जमात में से नहीं, तो आज आपको मुझे दुआ करनी है कि जो इल्म हमें मिल रहा है इसको अमल में ढालना है, अपनी ज़िंदगी का किबला दुरुस्त करना है। जब ज़िंदगी के किबले दुरुस्त होते हैं तो लोग बहसों और मुबाहसों में नहीं पड़ते, बल्कि क्या करते हैं, देखिएगा 148, वली कुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जे हो रहा है, तुम अपनी नेकियों की तरफ दौड़ो। जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। फस्तबिकुल खैरात। 148 आयत में जो बात है मेरे आपके समझने की वो है भाग दौड़ लगाओ, किधर, नेकियों की तरफ। नेकियों से नहीं भागो बल्कि नेकियों की तरफ भागो। हकीकत है कि हमें नेकी करने के वक्त पे सवाल सूझते हैं, बहस मुबाहसे सूझते हैं, लेकिन असल में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुकाबले का असल मैदान नेकियों में सबकत करना है। असल हार जीत आखिरत में होगी। इस दुनिया में जो कमा लिया, जो खा लिया, वो सब इसी दुनिया में रह जाएगा। और फस्तबिकुल खैरात का मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को बना लें। विच कहते हैं तवज्जो को, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी हर एक का एक इंटरेस्ट होता है ना। आप देखिए, बच्चे का इंटरेस्ट खिलौने हैं, मर्दों का इंटरेस्ट अमूमन टूल्स होते हैं, कमाना होता है, औरतों का विच घर होता है, और उसी के गिर्द घूमते हैं, जैसे कंपास की सुई दूसरी सुई के गिर्द घूमती है। अल्लाह ताला कहते हैं फस्तबिकुल खैरात, तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को बना लो। ला मकसूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। और जितना ये यकीन आ जाता है कि अल्लाह की ज़ात मेरी इन सारी चीज़ों को लेके चलती है, उतना इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। लेकिन एक माइंड मैप देखिएगा, आज उम्मत वसत का हाल क्या है। दर्द और दुख के साथ कहूंगी कि आज उम्मत वसत, जिसको अल्लाह ने इतना प्यारा काम दिया कि जिसको कहें कि नबूवत तो पूरी हुई, आप खातिमुन नबीयीन थे, रिसालत का मुकाम आपको मिल गया, लेकिन कार्य रिसालत अभी भी बाकी है। फस्तबिकुल खैरात की दावत थी। आज हम अपना जायजा लें, क्या हकीकत में मेरी जिंदगी या मेरी दौड़ नेकियों की तरफ है? और किसी भी दौड़ने वाले को जहन में ले आए, हल्के से कपड़े, खाली हाथ, एक्टिव स्मार्ट। हमें अपने हाथों को खाली करना पड़ेगा, कम से कम कुछ वजन तो कम करना ही पड़ेगा, अपना भी और अपने हाथों के सामान का। क्या आज उम्मते मुस्लिमा फस्तबिकुल खैरात की जगह फस्तबिकुल माल तो नहीं हो गई? फस्तबिकुल दुनिया, फस्तबिकुल कपड़े, फस्तबिकुल जूते और फस्तबिकुल डेकोरेशन पीसेस तो नहीं बन गई? या आप और मैं खुद सोचें, हमारी दौड़ धूप किस तरफ है? ये अल्लाह ताला आपको मुझे समझा दे। इसके बाद किबले की तब्दीली के नाते से कुछ अहकामात, और तकरार इतनी है कि ये पहला हुक्म था जो कि मनसूख होने वालों में से था। जितना ज्यादा बाहर प्रोपेगंडा था, अल्लाह ताला उतनी ही आयतों के जरिए अपने नबी के दिल को बांधते थे। देखिएगा 149, वमिन हई सुखरच तफवल्ली वच्छक। आप जहां से निकलें अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यानी ये हक है आपके रब की तरफ से, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इससे बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी की तरफ किया करो, ताकि लोगों को कोई हुज्जत बाकी ना रहे सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम इनसे ना डरो और मुझ ही से डरो। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जुमले पे गौर कीजिएगा, तुम इनसे ना डरो और मुझ ही से डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राहे रास्त पाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात की है कि लोगों का डर तुम्हें हक कहने से ना रोके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने उनको दीन की दावत दी। बाज़ माएँ कहती हैं बच्चे अगर ज़्यादा ही कुछ अल्लाह की बातें करेंगे तो उनके दोस्त उनको छोड़ देंगे कुछ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों को इस नेमत का एहसास दिलाया है जो उम्मते वसत में शामिल होने की थी, कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हें हीरों जैसा दीन दिया और तुम जरकोन पहनने वालों से मुतासिर हो। क्या लोगों की बातों के डर से दीन पर अमल छोड़ दोगे? एक जुमला लिखिए, लोगों का खौफ दीन पे अमल का शौक खत्म कर देता है। हर नबी को अल्लाह ने कुछ मोजज़ात दिए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, आंखों से दिखता था, आज नहीं है। हज़रत ईसा के बहुत सारे मोजज़ात थे, आज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ये कुरान था जो आज भी है और रहती दुनिया तक रहेगा। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि मालिक हमें इस किताब की कदर करने की तौफीक दे और हम इसको लेकर दुनिया में कोने कोने पे पहुंच जाएं। जिस तरह हमने तुम्ही में से रसूल भेजा और हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिससे तुम बेइल्म थे। और फिर वो है खूबसूरत आयत कि जो हकीकत में इस जिम्मेदारी को अदा करने में बहुत मुआविन है, और वो है कि जब एक इंसान अल्लाह ताला के ऊपर नजरें लगाता है तो क्या होता है, फस्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, आयत 152, जिसमें अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी तरफ मुतवज्जेह करता है। कैसे कि तुम मेरे तरफ नजरें कैसे लगाओगे, फस्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, पस मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा और मेरा शुक्र करो और ना शुक्री ना करो। ये कौन कह रहा है? कोई बराबर का दोस्त नहीं कह रहा कि तुम मुझे याद रखोगे तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। कोई आपकी सहेली नहीं कह रही या आपके मोहल्ले में रहने वाला कोई मारूफ शख्स नहीं कह रहा, बल्कि अर्शों का रब कह रहा है। जरा सोचिए तो सही, दुनिया का कोई फेमस पर्सन, कोई मशहूर इंसान, कोई ट्रेनर, कोई आलिम, कोई मुफ्ती और कोई गुलूकार, अदाकार, हीरो, कोई मॉडल हमसे कहे कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें करूंगी, तो कैसा लगेगा? कैसे लोग एक एक ऑटो लेने के लिए भागते हैं, एक तस्वीर खिंचवा लें हमारे साथ ताकि हम घर के ड्राइंग रूम में तो कल लगाते थे, आज हम प्रोफाइल पे लगाएंगे और लोगों को जलाएंगे। फुलां ने मुझसे हाथ मिलाया था, फुलां की गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई थी। अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझे याद रखो। इसको महसूस करेंगे ना, इसके बाद अल्लाह के कुर्ब के रास्ते करीब होंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और अल्लाह ताला कहता है तुम दिल में याद करोगे मैं तुम्हें दिल में याद करूंगा, तुम लोगों की महफिल में याद करोगे मैं तुम्हें आला तरीन महफिलों में याद करूंगा। इसको महसूस करना है, इसके ऊपर लफ्ज़ तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन अमल की बात है। और अल्लाह को याद सिर्फ नमाज में नहीं करना, कुछ को तो नमाज में भी नहीं याद आता। अल्लाह का जिक्र जुबान से भी, दिल से भी और अमल से भी। और देख लीजिए, शुक्र और जिक्र को जोड़ के ये बता दिया कि जितना किसी के मुकाम को पहचानेंगे, उसकी नेमतों को, उसकी दी हुई चीज़ों को कदर से देखेंगे, उतना उसका तذکرہ करना आसान होगा। और इसके बाद फिर आगे आयत 153 में जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए लोगों को सब्र और नमाज से मदद की दावत दी जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। अल्लाह की मदद पाने का जरिया सब्र और नमाज। सवाल पैदा होता है कि इधर किस सब्र की बात है? तो लिखिएगा, हर जिम्मेदारी वक्त चाहती है, तवज्जो चाहती है, माल चाहती है। चूंकि दिन रात ऐसे ही लोगों के बीच में घिरे रहने का मौका मिलता है कि जो अल्लाह के दीन को सर्व करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, जितना करते हैं उसको कम करते हैं, कहते हैं अभी और करना है, हमें और भी जिम्मेदारी दीजिए, और भी दीजिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये जज्बे कहाँ से आते हैं और फिर जब ये काम होते कैसे हैं, तो उसका जवाब इधर मिलता है। राहे हक में शहादते हक की गवाहियाँ देने में अगर घर में ऊंच नीच हो जाए, बीवी की बात बुरी लग जाए, शौहर की बात बुरी लग जाए, सास का मूड बिगड़ जाए, बच्चे भी कहने लगे मामा आप हमें वक्त नहीं देती, शौहर कहते हैं अब कई दिन से तो गर्म रोटी घर में पकी नहीं, तो वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। इसलिए कि आज के दौर में इस नस्ल को जो हमारे आपके सामने है, इसको रास्ता दिखाने के लिए आज के दौर के माँ बाप को शहादते हक की गवाहियां देनी पड़ेंगी, वरना जो आने वाले फितने उसमें उम्मत न बह जाए, हमारी नस्लें हमें बद्दुआएं न दें कि आपने हमें कैसी दुनिया में भेजा। तो याद रखिए कि हर काम के दरमियान मुश्किलात तो आती हैं, तो यहाँ ख़ास तौर पे मदद इस काम के लिए। पहले सीखने में मुश्किल होगी, घर वाले माइंड करेंगे, आपको याद नहीं होगा, इधर से भी डांट, उधर से भी डांट, उधर से डांट सुनकर गए, बच्चों को डांट के गए, चुप करो मैं जा रही हूँ, स्कूल में गए तो डांट पड़ गई, ये हुआ, कोई बात नहीं, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये तो चलेगा, ये तो होगा। अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में आराम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए भेजा, तो एक जेम लिखिए कि ये दुनिया काम की जगह और वो दुनिया आराम की जगह। होते होते इस रास्ते में इंसान अपना सब कुछ लगाता है, और मैं ये स्टेप्स आपको शऊर से कहने लगी हूँ कि इसके बाद फिर जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। पहले मान लगाने को दीन समझता है इंसान, फिर कोई स्केल थी तो वो लगा देते हैं, चलिए कुछ सदका ही हो गया स्किल्स का। फिर अपना घर ऑफर करते हैं, मेरे घर का कोई हिस्सा आप रख लीजिए जिसमें आप कुछ भी कर लीजिए। होते होते बंदा अपना आप पेश कर देता है, उसका जिक्र आगे आने वाला है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जान भी देनी पड़ती है, सेहत खराब होने लगती है, बिगड़ जाती है, वक्त नहीं मिलता, और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि मैदान-ए-जंग में जाके खड़ा कर दिया जाता है। चाहे वो तलवारें उठाने वाला हो, या कलम उठाने वाला, या बड़ा बड़ा फर्नीचर हटाने वाला हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का खूबसूरत इंजाम यानी शहादतें हक की गवाहियां देते देते अपनी जान से शहादत देने वालों का हाल क्या है। आयत 154, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मर्दाना कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। कैसे जिंदा शहीद? शहीद इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चला गया। इस पे भी बात सूरत में आगे आएगी, लेकिन यहां बस इतना समझिए कि एक शहीद पर बरजख नहीं आती, वो कब्र का वक्त भी जन्नत में गुजारता है। सब्स परिंदों के कालिब में उनको ढाल कर जन्नत में छोड़ दिया जाता है, और शहादत की मौत का ख्याल भी ना आना ये निफाक की अलामत है। और याद रखिए कि शहीद आलिम भी हो सकता है, मुजाहिद भी हो सकता है, मुबल्लिग भी हो सकता है, ताजिर भी हो सकता है कि वो इसलिए रिस्क हलाल और फराख कमाता है कि मैं अल्लाह के दीन को प्रमोट करूं। इल्म वाला इल्म देकर शहीद हो सकता है, और स्किल वाला स्किल दे के शहीद हो सकता है, माल वाला माल देगा। आपको मुझे अपनी चीज़ों को पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं, और जब इस रास्ते में इंसान निकलता है तो फिर अल्लाह हर एक को नहीं मारता। अगली आयत में मसाइबे खमसा का जिक्र है कि जो वाकई इस दुनिया की असल को खोल के रख देती हैं। क्या फरमाया? वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुई व नक्स मिनल अमवाली वल अन्फुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन। अपने ऊपर इस आयत को लेकर सुनिए, और किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, जानो माल से, और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। ये है मसाइबे खमसा, मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात। चंद जुमले लिख लीजिए। आजमाइशों के वादे किए जा रहे हैं जैसे मोहब्बतों के वादे किए जाते हों। आप देखिए, वला न ब्लू वन न कुम, व को हटा दें, लाम को हटा दें, पीछे से कुम को हटा दें, अंदर से बचेगा न ब्लू वन। शिद्दतें हैं, तीन ताकीदें हैं। आप देखिए, शद है ना, और नून के ऊपर वो भी, जिसको भी तजवीद आती है, और थोड़ा बहुत आप इन अरबी के राजों को जानते हैं तो तशदीद में ताकीदें होती हैं। अगर मैं इसका उर्दू में सही तर्जमा करूँ तो क्या होगा? और अलबत्ता, जरूर, और बिल जरूर, यकीनन हम तुमको आजमाएंगे। क्यों? आ गई आजमाइशों की बात, फितनों की बात। आजमाइशों की भट्टी में पककर मोमिन का ईमान पुख्ता होता है। जैसे कच्ची ईंट को भट्टे में डाल दें तो पक कर सख्त होती है, फिर घर बनते हैं। इसी तरह मोमिन जब आजमाइशों में से गुजरते हैं और आजमाइश गुजर जाती है तो वो बिल्कुल पक्की ईंट बनती है, और वो ईंटें मिलकर फिर दीन का घर बनता है। और कह लीजिए कि आजमाइशों का आना असल में जन्नत की इंस्टॉलमेंट्स हैं, शर्त ये क्या कि सब्र से इस रस्ते से गुजर जाए। वेस्ट में लोग घर लेते हैं ना तो किस्तों पे लेते हैं, जब आप डील साइन करके आते हैं और कुछ डाउन पेमेंट देते हैं तो उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स आती है ना, आप कहते हैं ये इंस्टॉलमेंट्स इस घर की हैं। तो लिखिए, आजमाइशें जन्नत की इंस्टॉलमेंट्स हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने अहले ईमान से जन्नत का वादा किया है, इसी तरह आजमाइशों का वादा भी किया। जिस तरह अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद का वादा किया, इस तरह आजमाइशों का वादा भी है, खूब आएंगी। मैं सब्र करना नहीं आता, देखिए कितना प्यारा सब्र है कि जब तकलीफ आई, आजमाइश आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ऐसे लोगों पे भी सलावात पे और रहमतें भी देता है, और उनको हिदायत भी देता है। लिख लीजिए, आजमाइश के बाद हिदायत जरूर मिलनी चाहिए। और सिर्फ उसको मिलती है जो मुसीबत को उस्ताद बना ले। हम पे आई हुई मुसीबतें, जिसमें एक आज के दौर में कोरोना की मुसीबत भी है, ये हमारी उस्ताद बन जाएगी अगर हमने इससे सीख लिया। दूसरा उस्ताद अपना बना लीजिए लॉकडाउन को, ये लॉकडाउन हमारा उस्ताद बन जाएगा इंशा अल्लाह ताला। एक वर्ल्ड वाइड टीचर है ये, इंटरनेशनल टीचर है ये। शर्त एक है कि इससे सबक ले लीजिए। हम सब्र भी बेसब्री से मांगते हैं, गॉड गिव मी पेशेंस बट सून। तो एक जुमला लिख लीजिए कि सब्र सब्र से आता है। हम क्या करते हैं, खूब दिल की भड़ास निकालते हैं, रोते धोते हैं, आवाज भी दब जाती, आंसू भी बहते, सर में दर्द भी, और जब कुछ नहीं कर सकते तो एक जुमला बड़े प्यार से बोल देते, अच्छा फिर मैं सब्र ही करती हूँ। तो सब्र क्या है इन आयतों में, जज्बात को थाम लेना, जुबान को रोक लेना, ये सब्र है। जिंदगी को जिंदगी देने वाले के नाम लगा दीजिए, ये सब्र है। और देखिए बशर साबिरिन, खुशखबरियां हैं। और इन्ना लिल्लाह लोग मरने पे कहते हैं, हम सारी जिंदगी इस खौफ का शिकार होते हैं लोग क्या कहेंगे, तो लोग तन पे हमारी मौत की खबर सुनकर यही कहेंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अपने आप को अल्लाह के आगे डाल दीजिए, अल्लाह ताला के लिए जो थकन आती है उस पे सब्र कीजिए, सुकून मिलेगा। कुर्बानियां देते हैं तो रोएं क्यों, खुशी महसूस कीजिए। और जब अल्लाह आपकी कुर्बानियां कबूल कर लेता है ना, तो आपको तो क्रेविंग होती है कि अब कोई और भी तो आजमाइश आए ना, आजमाइश से मुराद है कोई और भी तो जिम्मेदारी आए ना, कुछ और भी तो दीन का काम अपने ऊपर ले लूँ। और हत्ता कि जब रोजे आते हैं कहते हैं, हाय अब रोजा रख के मैं नहीं सुन सकती, अब तो सोऊंगी सारा दिन, रात को देखेंगे। तो रोजा रख कर बदमिजाजी से बचना, घर वालों को डांटना, ये सब्र नहीं। और रोजा रख के नमाजें कजा करना और दौरे कुरान को मिस कर देना कि इतनी सुबह कौन उठे, ये भी बेसब्री की बात होगी। और जब अल्लाह ताला के लिए तकलीफें सहेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसका बदला देगा। ऐसे लोग जो वाकई सब्र वाले होते हैं, जब इन पे कोई तकलीफ आती है और खबर मिलती है तो क्या करते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं, इन पर इनके रब की नवाजशें और रहमतें हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो हिदायत याफ्ता होने के लिए सब्र करना पड़ता है। और ये जुमला भी नोट कर लीजिएगा, शायद कभी आपको इससे फायदा हो जाए कि मौत का इंतजार नहीं करना, जिंदगी में आईने के सामने खुद को खड़ा करके के इन्नी लिल्ला, मैं अल्लाह की हूँ। देखिए फिर आप अपने जिस्म पे अपनी मर्जियां नहीं मनवाएंगे, अपने घर गाड़ी पे ये नहीं कहेंगे मेरी मर्जी, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं। और अगर बात नहीं अभी भी सब्र की समझ आई, तब आपके मेरे सामने एक रोल मॉडल है। पिछले पारे में उम्मते बनी इसराइल को सारी नसीहतें की गईं और रोल मॉडल के तौर पे इब्राहिम की शख्सियत पेश की गई। दूसरे पारे के आगाज में सारी बातें कहकर अब जो रोल मॉडल हस्ती है वो है इब्राहिम की बेगम, मिसेज इब्राहिम, नाम इधर भी इब्राहिम का ही आएगा, और वो है बीवी हाजरा। एक औरत का सब्र, आइए देखते हैं। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज करने वाले पर इनका तवाफ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद इसके कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। हाँ मगर जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और अहम करने वाला हूँ। बीबी हाजरा, जब सफा मरवा का लफ्ज आए तो ये कैसे हो सकता है कि इब्राहिम के घराने का जिक्र ना आए। और हकीकत है कि जब वाकई इन्ना लिल्लाह की हकीकत समझ आती है तो फिर कुर्बानियां देने वाले घबराते नहीं। ये कुर्बानियां देने वाले घराने की सुन्नत है, जिम्मेदारी अदा करने वाले एक खानदान एक कपल की जिम्मेदारी की बात है। आखिरत में तो इन लोगों के दर्जे होंगे ही, दुनिया में भी अल्लाह ने इनको क्या इज्जत दी कि इस औरत के नक्शे कदम पे कयामत तक के लिए मर्दों को भी चला दिया कि जब कभी सफा और मरवा की सही करोगे तो जहां बीबी हाजरा आहिस्ता चली तुम भी आहिस्ता चलना, और जहां तेज दौड़ी तुम भी दौड़ो। अल्लाह इस तरह कदर करता है उन कदमों की। लिख लीजिए जो कदम अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उसको मुकामे इब्राहिम बना देते हैं। अल्लाह ने इब्राहिम के खड़े होने की जगह को भी जाय नमाज बना दिया। आप और मैं कुर्बानियां करेंगे तो क्या अल्लाह जाया करेगा? क्या इतनों में उसको हम दिखेंगे ही नहीं? ऐसा नहीं होगा। तो जो अल्लाह की राह में कुर्बानियां देते हैं, अल्लाह इनको और इनके अजर को जाया नहीं करता, क्योंकि वो है ही शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने अपनी कदर की सिफत और इल्म की सिफत को यहां रख दिया। अल्लाह करे कि मुझे आपको इन दोनों चीजों की समझ आ जाए, और हम इल्म भी हासिल करें और शाकिरुन अलीम बनने वाली हस्ती की इस बात पे इतबार करें, और अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए खालिस करते जाएं। एक दिन आ सकता है कि लोग आपकी भी मिसालें दें कि इन्होंने उस वक्त के दौर में दीन को थामा जिस वक्त सब छोड़ रहे थे। ना कोई हमें मेंशन करे, हमने लेना भी क्या किसी से। क्यामत के दिन जहां इशारों की बात होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, अब जरा कुछ और घरानों की भी तो बात करो। वो कुछ और फैमिलीज भी थी ना जिन्होंने मेरे दीन के लिए अपनी जिंदगी को तज कर दिया था, जिन्होंने अपने आराम को, घर को, कारोबार को, जॉब को दांव पे लगा लिया था। जरा फरिश्तों उनको भी लाएं। और आप सस्पेंस में खड़े हैं, किसका जिक्र होने लगा है, कौन खुशकिस्मत है, और तसव्वुर में भी नहीं, वहमो गुमान में नहीं। और वहां से आपका नाम, आपके शौहर का नाम या आपकी बीवी का नाम और आपके बच्चों का नाम पुकारा जाए। कोई ग्रेजुएशन याद कीजिए, कोई रिजल्ट डे की ओरिएंटेशन याद करें। पेरेंट्स को साथ लेके जाना शर्त होता था। धड़कते दिल के साथ माँ बाप या किसी एक को लेकर जाते थे आप, और वहां जब रिजल्ट बोले होते थे तो वो कहते हैं कि काटो तो बदन में लहू नहीं। और जब लोग अपने अपने माँ बाप के साथ लाइनों में बैठते हैं, आप कहते हैं किसी पेपर में फेल ना हो जाऊं, हाय ये ना हो वो ना हो। और नीचे से नाम पुकारने जाते हैं, तीसरी पोजीशन भी आ गई, दूसरी भी आ गई, और उसके बाद क्या हुआ? आखिर में आपका नाम पुकारा गया। वल्लाही वो शाकिरुन अलीम है, शाकिरुन अलीमुन। शर्त एक है, वमन ततव्वा खैरन। आप इसको ना भूलिए, इस लफ्ज को आप बाद में हाईलाइट कीजिएगा 158 का। वमन ततव्वा, खुशी से कीजिए। मुतव्वा अरबी जुबान में वॉलंटियर को कहते हैं। कभी आप सऊदी अरब गए हों तो वहां कहते हैं मुतव्वे फिर रहे हैं, जो लोगों को असिस्ट करते हैं। जो काम कीजिए खुशी से कीजिए, नमाज पढ़ें तो खुशी से पढ़ें, और दीन के लिए कुर्बानियां दें तो खुशी से करें। लव योर जॉब। और जॉब से मुराद क्या है यहाँ? जिम्मेदारी। बींग अ मुस्लिम, आप चाहते हक की कोई कोशिश कर रहे हैं, इससे प्यार कीजिए। फिर देखिए वो कदर करने वाला, पता नहीं क्यामत के दिन आपको वो कितना हैरान कर देगा, और वो आपके बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है उस वक्त जब आप उसके लिए सच्चे हो जाते हैं। ये अपना बंदा है, फरिश्तों जाने दो, है गलती, अल्लाह देखे ये भी ठीक है, ठीक है, कोई हराम गलती तो नहीं। अच्छा वो छोटी, उससे तो उसने तौबा कर ली थी। अच्छा वो उधर, कोई बात नहीं, जाने दो, ये मेरा बंदा है। ट्रस्ट डिवेलप कीजिए, सारे खजानों की चाबियां आपके हाथ में होंगी। घर के उस मुलाजिम पे आप ट्रस्ट करके उसको लॉकर की भी चाबी दे आते हैं जो पिछले 20-25 साल से आपके घर में जवान आया था, बूढ़ा हो गया। ट्रस्ट दुनिया की वो दौलत है, उसको हासिल करने के लिए माल कमाने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ट्रस्ट तब डिवेलप होता है जब आप किसी को साबित कर देते हैं, मैं हर हाल में आपका बंदा हूं, हर हाल में मैं आपका वफादार हूं, अल्लाह ताला आपको मुझे अपना वफादार बना दे। अब इसके बरक्स एक दूसरी सूरत है जो तकलीफ देह है, और वो क्या है? इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार। यकीनन जो कुफार अपने कुफर ही में मर जाएं। दुआ कीजिए अल्लाह मेरे इस जिम्मेदारी से लाबलत होने की वजह से मेरे इर्द गिर्द वाले कुफर में ना मर जाएं। इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। देखिए मैं और आप अपने इर्द गिर्द वालों के जिम्मेदार हैं। अपनी मेट्स के नाम लिखिए अगर आप गैर मुस्लिम मुल्कों में, अगर पाकिस्तान या किसी और शहर में या किसी और मुल्क में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, घरों में आने वाली मासियों में देखिए कोई गैर मुस्लिम तो नहीं, और अगर मुस्लिम है तो बेनमाजी तो नहीं। इसकी कोशिश कीजिए, वरना कल क्यामत के दिन ऐसा ना हो कि हमारा गिरेबान हो और इनके हाथ हों। अल्लाह जिम्मेदारी का ये एहसास दे दे। हम अपनी जिम्मेदारी इन चार बच्चों को समझते हैं, ये चार बच्चे पढ़ जाए, तो क्या होगा, जिनकी शादियां हो जाएं, बेटियों के हाथ पीले हो जाएं, बेटों की जॉब लग जाए, लड़की पसंद है, क्या आज 80-90% उम्मत इन्हीं गमों में नहीं मर रही? कितने हैं जिनका दिल फटता है, जिनका दिल पिघलता है उम्मत का दर्द। उम्मत का दर्द ले आए, शहादत हक की जिम्मेदारियां कबूल हो जाएंगी। फिर करेंगे तो वही जो फत्तकुल्लाह मस्तता, तो फिर आप में से मेरे में से हर एक अपने हालात देखे, अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है और मैंने कितना काम करना है। और ऐसे बदबخت जो जहन्नम में चले गए, खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी कदर की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह की राह में आजमाइश, इंसान की आजमाइश का फितना, जब एक इंसान अल्लाह के रस्तों में आजमाया जाता है ना, तो ये उसकी आजमाइश होती है। जब कभी भी आप पे कोई आजमाइश आए ना दीन दुनिया की, फौरन इस बात को याद रखिएगा, आई थिंक सो, मैं टेस्ट की जा रही हूँ, मेरी आजमाइश हो रही है। तो याद रखिए, आजमाइशें रंग बदल बदल के आती हैं। जब भी कभी आजमाइश आए उसको समझिए। दूसरी बात यह है कि ये बात कभी ना भूलें कि अल्लाह सुबहानहू व तआला मेहरबान भी है और रहीम भी है, और हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है, इसका कोई शरीक नहीं है। इसके बाद आपके मेरे सामने आयत 164 है, जो मैंने शुरू में भी बता दी थी, आयतुल आयात, 6 निशानियां, नेचुरल फिनोमिनन्स जो सुबह शाम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं लेकिन कभी नजर नहीं उठाते। अल्लाह इनको इबरत बनाकर हमारे सामने पेश करता है और साइंस के राज खोल दिए कि क्या ये कायनात इतनी खूबसूरत खुद ही चल रही है। आइए देखते हैं। इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिला फिल लैली वन नहार, आसमान और जमीन की पैदाइश, रात दिन के हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को लिए हुए समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। है अल्लाह हमें अक्लमंद बना दे। कायनात में जो कुछ हुसन बिखरा हुआ उसको देखिए, जमीन का अपने महवर पे 23 पॉइंट सम डिग्रीज पे झुका होना देखिए, मौसमों का बदलना देखिए, सूरज का चांद का अपने हिसाब पे आना जाना देखिए, फिर बताइए क्या ये खुद ही हो रहा है? और जिस मालिक ने इतनी परफेक्ट दुनिया बनाई, क्या उसकी शरीयत में झोल होगा, अधूरी शरीयत देगा? उसकी जन्नत कितनी हसीन होगी, यानी सूरज चांद सितारों की ये गर्दिश देखकर आपका भी दिल करेगा कि मैं अपने रब के आगे झुक जाऊं। लेकिन कुछ लोग इतनी कमजोर निगाह के होते हैं, शॉर्ट साइटेड, कि उनको ये इतनी बड़ी बड़ी निशानियां सामने देखने के बावजूद अल्लाह तो नहीं नजर आता। लेकिन क्या होता है, 165 देखिएगा, वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह ताला के अजाब को देख कर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, मुराद क्या है, तो हरगिज़ शिर्क न करते। लिखे मुशरिक की नज़र कमजोर होती है, उसको इतना बड़ा जहान अल्लाह का कारनामा नहीं दिखता। जिसको किसी ने कहा ना कि खोल आंख, जमीन देख, आसमान देख, मशरिक से उभरते सूरज को देख, चांद को देख, वो छोटी छोटी चीजें देखता है। लोगों के पल्लू थामने वालों को आयत 166 का नंबर कम अज कम याद कर लेना चाहिए, क्यामत के दिन की एक झलकी है इन आयात में। देखिएगा, जब दूसरों के पीछे चलने वाले परेशान होंगे, इस तबर्रल्लज़ी नत्तबियू मिनल्लज़ी नत्तबाऊ, जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और ताबेदार लोग कहने लगेंगे काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं, तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हैं। और इसी तरह अल्लाह तआला इन्हें इनके आमाल दिखाएगा इनको हसरत दिलाने को, ये हरगिज़ जहन्नम से नहीं निकलेंगे। ये है जी दुनियादार कायदीन की पैरवी का हसरत नाक अंजाम। लोग इनके कुछ भी नाम दें, कुरान ने तो दो ही नाम दिए हैं कि एक है वो जो पैरवी करते थे और एक वो कराते, यानी पेशवा और ताबेदार। आप इसको पीर और मुरीद कह लीजिए, बुजुर्ग साहब और उनके नियाजमंद और अकीदतमंद कह लीजिए, लेकिन बात तो ये है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई भी हो, किसी भी इंसान ने अगर शख्सियत परस्ती करवाई, पर्सनैलिटी वर्शिप करवाई और दूसरों को ये उम्मीद दिलाई कि कल मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा, तो फिर उसके लिए ये आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने चार पांच इंजाम बता दिए। नंबर एक, रिश्ते टूट जाएंगे, वहां तो कोई शक्ल ना देखना चाहे, कहाँ कोई रिश्ता जोड़े, अजाब अपनी आंखों से देख लेंगे। पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार होंगे और क्यामत के दिन हसरत और यास की तस्वीर होंगे। कभी आपने दुनिया में इसका तजुर्बा किया होगा, आपके पास बहुत लगेज है, आप चाहते हैं कि ये चला जाए। अच्छा, वहां फुलां काम करते हैं, आप आइएगा, वो ले आएंगे, वो आपका कर देंगे कुछ। आप पहुंचे, वो मौजूद ही नहीं, अब क्या होगा? दुनिया में क्या नहीं है तो ना से छोड़ जाइए। आप घबराते हैं, बाद में फोन के वो कहते हैं, अरे आज तो मैं जॉब पे ही नहीं हूँ, मेरी तो आज ड्यूटी नहीं है। आप मुझे बताइए, यहाँ क्या नुकसान होगा? कभी एयरपोर्ट पे लोगों के पोटले खुलते बंद होते देखिए, और क्यामत के दिन क्या होगा जब दूसरों की वजह से गुनाह किए हुए फुलां बचा लेगा, फुलां का पल्लू पकड़ लेंगे, फुलां की सिफारिश, अल्लाह कहते वहां उस वक्त समझ आएगा कि हम किन चीजों में थे। तो आज दुनिया में तौबा कीजिए। आज यहाँ इसको इस पारे के थीम से भी जोड़ लीजिए, चूंकि उम्मत में से अक्सर ने शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो लोग शिर्क पे मरे। आपके मेरे इर्द गिर्द लोग क्यों मुशरिक हैं? आपके हमारे मुल्कों में मुसलमान होने के बावजूद भी अपने इर्द गिर्द वालों को मुतासिर क्यों ना कर सके? क्योंकि जिम्मेदारी के बोझ से ही खुद को पाक कर दिया। कहते हैं ये है ना वो फलां जमात, तबलीग कर तो रहे हैं बेचारे, वो फलां है ना, वो दावा कर रहे हैं ना, और फलां 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 चार छह जमातों ग्रोहों के नाम लेके कहते हैं, बस हम कैसे ये काम करें। तो आज मैंने आपने इसको महसूस करना है। अगला जुमला, क्यों ये जिम्मेदारी भूलती है बार बार? शहादत हक की जिम्मेदारी बार बार क्यों भूलती है? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। आपने नोट किया, वल्लज़ी आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और यहाँ सच्ची जो मोहब्बत है ना अल्लाह की, यही असल में फ्यूल है शहादत अलन्नास का। अल्लाह से मोहब्बत ना हो तो कौन उसके रास्ते में ये हिजरतें कुर्बानियां दे, कौन इस वक्त दर बदर फिरे। और यहाँ एक बड़ा प्यारा जुमला नोट कर लीजिए, लफ्ज़ हुब है, उर्दू में तो मोहब्बत कहते हैं, यहाँ लफ्ज़ क्या आना चाहिए था हमारी सेंस में, वल्लज़ी आमनू अशद्दु मोहब्बतन लिल्लाह। आसान लगता है ना मोहब्बत, तो जुमला लिखिएगा कि मोहब्बत की जगह यहाँ हुब्बन क्यों आया। तो वजह यह है कि मोहब्बत वन साइडेड भी हो सकती है, मुझे उससे मोहब्बत है, फुलां को तो नहीं है, लेकिन हुब में दो रुख अमल होता है। मोहब्बत इज वन वे लव, हुब इज टू वे लव। आप अल्लाह से करें, अल्लाह आपसे करेगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के कुरान के इन लफ्जों को चूमने को दिल करता है, क्या खूबसूरत चुनाव है लफ्जों का। लेकिन आज हकीकत ये है कि दुश्मनों की दुश्मनी हमें इतना परेशान नहीं करती जितनी हमें दोस्तों की बेरुखी और उनका दूर दूर रहना दुखी करता है। दुनिया वालों की मोहब्बतें अल्लाह के दीन की जिम्मेदारियां अदा करने से ना रोकें। सोचिएगा बाद में कि वाकई क्या अल्लाह की मोहब्बत इतनी थोड़ी है मेरे दिल में कि अल्लाह का काम पीछे डाल के दुनिया के कामों में जाती हूँ। अल्लाह ताला आपकी मेरी इसलाह फरमाए। अब नेक्स्ट थिंग नोट करें, क्यों जिम्मेदारी नहीं याद? अक्सरियत को क्यों नहीं याद? इसलिए कि पेट में जाने वाली चीजों में शक है, इसीलिए आगे हलाल हराम का तस्करा और दुश्मन जो पीछे लगा है उसके चंद शोशे जो हमारे इर्द गिर्द फैलाता है। फरमाया कि लोगो, गाड़ी में जो जाएगा गाड़ी वैसी ही चलेगी, तो इस जिस्म की गाड़ी में हराम न डालना। या अय्युहन्ना सुकुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, लोगों जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर इन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं। हराम गिजा का असर जिस्म पे से लिबास उतर गया आदम और हवा के। पहला फेल जो शैतान ने आदम से करवाया वो अल्लाह के हराम करदा को चखाने का था, और आज भी दुनिया में यही है। जिंदगी में जितना हलाल आएगा जिम्मेदारी याद रहेगी शहादत अलन्नास की, और ये भूलती जाएगी तो दूसरी तरफ हम निकलते जाएंगे। और दूसरी बात देखिए कि तकलीद की बात है इधर, اندھی تقلید. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابے داری کرو, تو جواب دیتے ہیں ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا, گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم راہ کردہ ہوں. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں, سمجھتے نہیں. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں, انہیں عقل نہیں. اے ایمان والو, جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو. تم پر مردار اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو, اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اسے اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں, یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار, اور یہ برا سودا انہوں نے کیا کیوں؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق, ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں. اللہ کی پناہ. حلال حرام ایک سنجیدہ موضوع ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3984, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حلال واضح ہے اور حرام بھی, ان کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں, یعنی ڈاؤٹڈ ڈاؤٹ فل, جنہیں بہت سے لوگ نہیں جان پاتے کہ یہ حلال ہے یا حرام. جو ان شبہ والی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا, اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا. آگاہ رہو, بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ رہو, وہ دل ہے. تو امت وسط کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو احکامات دیے گئے ان چند آیتوں میں, ایک تو تھی آبا پرستی, باپ دادا کی اندھی تقلیل, اور یاد رکھیے کہ ماس مینٹیلیٹی ہے. بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے ایون دین کے نام پہ کئی کام کرتے ہیں, اور آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے آئے, یہ کس نے کیے؟ کہتے ہیں دادی اماں کرتی تھی, رجب میں کنڈے بھرتی تھی اور وہ محرم کی سبیلیں لگتی تھی. اچھا ذرا قرآن کی آیت دکھا دیجئے, حدیث, وہ تو مجھے نہیں پتا. یعنی لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کاپی کرنا. دیکھیے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں, خود محنت کر کے علم کے موتی جمع کرنا اور اس کو ایک خوبصورت انداز سے پیش کرنا, یہ کام آسان ہے کہ مشکل؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو, یہ کام ایک دو دن میں ہوتا ہے, لیکن ایک سنیپ کھینچ کے اس کو کاٹ پھانٹ کے ادھر سے ادھر بھیج کے جا کر اس پہ جو مرضی کر لیجئے, فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصل اور نقل میں فرق ہوتا ہے. کاپیڈ چیز کبھی ریئل چیز نہیں ہوتی. کاپی کرنے والے, پیرنٹس کو کاپی کرنے والے, معاشرے کو کاپی کی. ایک بچہ اپنے استاد کے ساتھ تھا اور استاد میتھ سکھا رہے تھے. استاد نے کہا کہ ایک پہاڑی پر 100 بھیڑے ہیں, یعنی شیپ, ان میں سے ایک کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی, یہ بتائیے کہ پیچھے کتنی رہ گئیں؟ بچہ بولا 0, ایک بھی نہیں. استاد نے کہا یو ڈونٹ نو میتھ, تمہیں میتھ نہیں آتا؟ تو بچے کا سوال سن لیجئے, ٹیچر یو ڈونٹ نو شیپ, لگتا ہے کہ آپ کو بھیڑ کی ذہنیت نہیں پتا. کیوں کہتے ہیں بھیڑ چال؟ کیونکہ جب ایک بھیڑ گرے گی نا تو باقی 99 اس کو گرا لیں گی. آج بھی امت کا یہی حال ہے. ایک ڈیزائنر آپ کے فیشن کو بدل دیتی ہیں, اونچی قمیضیں چھوٹی چھوٹی راتوں رات نیچی کیوں ہوتی ہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اس ماڈل میں زیادہ کانفیڈنس ہے آج کے مسلمان سے جو شہادت حق کی ذمہ داریوں کا حامل تھا. تو یاد رکھیے, حق کے لیے کھڑے ہو جائیے چاہے اکیلے رہ جائیں. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. सवाल पैदा होता है कि हमारे बड़े वाकई ना समझी में भोलपन था। सच्ची जो बात है, इल्म इतना आम थोड़ी था कि आपके लिए एक क्लिक पे इल्म मिल जाए। तो फिर क्या करें? बाप दादा के लिए बेहतरीन सदका जारिया ये है कि आप उनके गलत तरीकों को छोड़ दीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए। और साथ ही आप देखिए कि इसमें हक को छुपाने की भी तो बातें हैं ना। तो बात लोग मसलहत के नाम पे हक को छुपाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने उम्मते वसत को जो अहकाम दिए, खाने के दो असूल हैं, हलाल और तैयब हो। तैयब खाना खाकर सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसका शुक्र, और चार हराम चीजों से मुकम्मल परहेज। आजकल उम्मते वसत हराम चीजों से मुकम्मल परहेज न करने और हलाल और तैयब रोजी पर इक्तफा न करने के फितनों में मुबतला है। कितनी खवातीन पूछती हैं अपने घर के मर्दों से कि कहाँ से लाए आप ये सोने का सेट, आप कैसे ले आए, आपकी तो इतनी पे भी नहीं। ये गिफ्ट के नाम पे घर में जो चीज आई है ये कहाँ से है, कहीं ये रिश्वत तो नहीं है? और अगर औरतें ऐसा पूछने वालियां हो जाएं तो मर्द कभी भी नहीं लाएंगे। और याद रखिए कि जो लोग मसलत के नाम पे हक को छुपाते हैं, अल्लाह ने तो पीछे कह दिया कि ला युकल्लिमुहुमुल्लाह। कांप जाता है बंदा इस बात पे कि अल्लाह मुझसे कलाम नहीं करेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अगर हुआ, और अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं तो कहते हैं ना सही, मैं कौन सा चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे। तो इस सोच के साथ दुआ कीजिए कि मालिक मुझे हकीकत में सही मानों में अमल करने वाला बना दे। अब इसके बाद है आयते बिर, जो वाकई कुरान पाक का एक खूबसूरत मजमुआ है हुक्मों का भी और दीन को समझने का। इस एक आयत पे हमने बहुत कुछ किया, दो सीडीज थी एक मौके पे। इसी तरह इस्लाम ए टू जी के नाम पर तदरीजन यानी फर्स्ट कम फर्स्ट है, दीन का पूरा दरख्त कैसे बनता है। अभी सिर्फ हम ये सोच के पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आपको मुझे इससे भरपूर तरीके से फायदा उठाने वाला बनाए। लैसल बिर्रान तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक वल मगरिब। इस आयत के अनवान को अगर देखें तो नेकी का जामे तसव्वुर और उम्मत वसत के लिए एक आईना है ये, जिसमें इंसानी हमदर्दी में माल खर्च करना, नमाज और ज़कात का एहतमाम करना और ईफाए अहद पूरा करना यानी वादा पूरा करना है। तर्जमे से ही बहुत सारी बात समझ आ जाती है। सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताब इलाही पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी करे और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंग दस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे, यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। तो ये है आयते बिर, उम्मत वसत के लिए कायना। बात तौहीद से शुरू हुई, मामलात और अखलाकियात से गुजरते हुए नीचे पहुंची। आपके मेरे लिए एक सवाल है, क्या आज उम्मत वसत के अकीदे ठीक हैं? कहीं तौहीद की जगह शिर्क और सुन्नत की जगह बिदात ने तो नहीं ले ली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन और आज की उम्मत वसत क्या दो पैरेलल चीजें हैं या दो मुख्तलिफ चीजें? और रसूल का मिशन तो शहादत अलन्नास था। किस तरीके से आज हम इससे गाफिल हैं? यह आयत हमें इसका इशारा करती है। हमारा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मत वसत की इबादत भी कमजोर हुई और मसाजिद तो बहुत हों लेकिन नमाजियों से खाली हों, फिर अल्लाह खाली ही करा लेता है। पहले भी कितने को आते थे जो अब लॉकडाउन में नहीं आ रहे। क्यों इन बातों पे बहस करते हैं? मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करती जाऊं, कुछ खवातीन, इवन खवातीन, मर्दों को तो पीछे कीजिए, वो बहसें करती हैं कि हम तरावियां घर में पढ़ें, कि हम तरावियां मस्जिद में पढ़ें, हम नमाज किधर पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए, आपने मैंने शुरू से जो देखा है वो हमारे कल्चर का हिस्सा था। दीन इस्लाम की खूबसूरती को देखिए। अपने लिए चंद सवाल लीजिए, क्या औरतें घर के मर्दों और बच्चों को मस्जिद में भेजती हैं? आम हालात की बात की जा रही है, लॉकडाउन की नहीं। उलिल अम्र की बात मानते हुए, फितनों से बचते हुए और इस बात का यकीन रखते हुए कि हमारी इन कोशिशों से जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हम हुक्म नहीं तोड़ेंगे, हम इतात करेंगे। लेकिन तवक्कुल तो है, अल्लाह ने जो कहा असबाब इख्तियार करो, तो नून में नुक्ता कभी नहीं बनना चाहिए और ना बड़े बड़े फतवे देने चाहिए। लेकिन आम हालात में आज कल लॉकडाउन में नियत कीजिए कि अभी नहीं, लेकिन जो ही हुकूमत इजाजत देगी, हालात मुनासिब होंगे, हम अपने मर्दों को बच्चों को मस्जिद में भेजेंगे और हमारे भाई भी नियत करें। इन दिनों को हमेशा याद रखेंगे, ये जुम्मे रोते हुए जो गुजरे इसको याद करेंगे और इसके बाद कभी जुमा नहीं छोड़ेंगे, जॉब के नाम पे ही सही। उम्मते मुस्लिमा के मामलात कैसे हैं? नबी सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, मगर आज उम्मत किस नाम से मशहूर है? उम्मते वसत में वादों की पासदारी कितनी है? उम्मते मुस्लिमा माल कहाँ खर्च करती हैं? हमारे पैसे कब और किन चीज़ों पर लगते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि उम्मते मुस्लिमा में आज सब्र कितना है? इंशाल्लाह जो आपको लेक्चर दिया जाएगा, बल्कि आप उसके नोट्स लेके बाद में शेयर कर सकते हैं, उसमें चार किस्म के लोगों का तذکرہ है जो किसी भी माशरे में अमूमन होते हैं। और बिर जंगल को कहते हैं, और बिर छोटी बड़ी लकड़ियों और दरख्तों और पौधों वाली जगह को भी कहते हैं। तो क्या पता चला कि उम्मत को सुकून तब मिलेगा, वो सिर्फ अपनी सिलेक्टेड नेकियां नहीं, क्या फतूह में नूना भी बात दिल किताब ही वकफुरू ना भी बात, पूरे दीन पे अमल करेंगे, यानी फिजिकल लॉज एंड मॉरल लॉज का मजमुआ होंगे। आज हमारे माशरे में दो स्ट्रीम लाइन चल रही हैं, कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं, उनके पास इबादत का वक्त नहीं है, इल्म हासिल करने का वक्त नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग इबादत में भी मसरूफ हैं और इबादत भी करते हैं और इल्म भी लेते हैं, लेकिन उनके पास सोशल वर्क का वक्त नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि कुछ गरीब गुरबा तक रिस्क नहीं जा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से एक राशन फंड कायम किया गया। उसकी डिटेल्स आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आपको मैसेजेस में भी आएगी। मकसद इसका उन लोगों तक राशन पहुंचाना है कि जो राशन ना होने की वजह से आज तो घरों में है और आम हालात में अफोर्ड ना करने की वजह से इल्म नहीं हासिल कर सकते। 2 साल से पिछले अल्लाह ताला ने जौहराबाद और उसके गिर्दो नवाह में काम करने का मौका दिया, वहां से जो गवाहियां आती हैं उसको सुनकर दिल रोता है। रिक्शों का किराया न देने की वजह से लोग बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजते और इसी तरह से बहुत सारी चीजें। तो इस राशन फंड को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने रखेंगे और आप में से वही इसमें आगे आए कि जो वाकई इस चीज पर यकीन रखता हो कि ये सब फंड्स इंशाल्लाह ताला सिर्फ इसी चीज में इस्तेमाल होंगे जिस चीज को दिया जा रहा है। जरूरत भी इसी बात की है, सारा कुछ साथ लेकर चलिए। एक तरफ जब हम झुक जाते हैं ना, तो फिर हम पे एक छाप भी तो लग जाती है। अब इसके आगे आयते बिर से लेकर कह लीजिए कि पारे के एंड तक, फिर आगे भी तीसरे पारे में भी कुछ चीजें, उम्मते मुस्लिमा को किस शरीयत की पैरवी करनी है, उसके छोटे छोटे अहकाम हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज कसास है। 178 से ऑनवर्ड चलेंगे। और चूंकि ये सब चीजें यहाँ एक तारुफ है, आगे कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इनमें से हर एक की अलग अलग तफसील आएगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम यहाँ ज्यादा बात ना करें, बल्कि आप अल्लाह ताला के इन अल्फाज को इंजॉय कीजिए। तर्जमे पे नजर रखिए और पेन या उंगली के साथ इसको फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से दीन इस्लाम का एक नट शेल में बंद होना और उसका एक खुलासा समझ आ जाएगा, दीन में क्या चीज कहाँ आती है। बिल्कुल एक गुलदस्ता लगता है मुझे कि जिसमें छोटे बड़े फूल हैं और आप उससे फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर मक्तूलों का कसास लेना फर्ज किया गया, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए, इसे भलाई की तबाह करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए, यानी ब्लड मनी। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फीफ़ यानी कमी, सहूलत, रिलैक्सेशन और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे, इसे दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ताला कैसे इंसानी जान की हुरमत करते हैं। तो कसास का हुक्म क्या है? हुक्मे कसास पर अमल कीजिए, इंसानी जान की हिफाजत है। एक जुमला जिसने सारी दुनिया के थिंक टैंकर्स को हैरान कर दिया। क्या अकलमंदो, कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, इसके बायस तुम कत्ले नाहक से रुकोगे। तुम पर फर्ज कर दिया गया कि जब तुम में से कोई मरने लगे, यहाँ से वसीयत के अहकाम आते हैं, तुम पर फर्ज कर दिया गया जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो, तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए, परहेजगारों पर यह हक और साबित है। अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, इसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा, वाकई ही अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, بس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ وصیت کے احکامات جو مزید ہیں وہ ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے، تو وہاں آپ کے ذہن میں بھی جتنے بھی سوالات اٹھیں گے اس حصے کو سننے کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ بس یہاں اتنا سا سمجھ لیجئے کہ انسان دوستی اچھی چیز ہے لیکن انسان پرستی مطلوب نہیں۔ آج بہت سی این جی اوز ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو چیلنج کرتی ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی، وہ نہیں، تو یاد رکھیے کہ 90 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کیسے ایسی سزائیں دے سکتی ہے کہ جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسائل اس لیے سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں۔ پھر اسی طرح دیکھیے آیت 180 میں حق کنل المتقین، وصیت کی باتیں کون کرے گا، مال کی باتیں کون کرے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ متقین کے پاس بھی مال ہو سکتا ہے۔ آج ہم تو پیسہ اور علم اکٹھا دیکھ ہی نہیں سکتے، مولوی صاحب اور اچھی گاڑی میں ہوں تو ہمیں شک ہونے لگتا، اے سی لگ گئے مسجد میں تو گھبراہٹ ہونے لگتی۔ تو یاد رکھیے کہ متقی کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو وصیت کرے گا نا جاتے ہوئے۔ عثمان عبد الرحمن بن عوف کیا متقی نہیں تھے؟ تو مال برا نہیں، اس کا استعمال برا ہے۔ اب بات کی تقوی کی، وراثت کے معاملوں میں تقوی ہوگا تو دنیا سے جانے والوں کے مال کو صحیح طرح بانٹو گے۔ اب 183 سے تقوی پروڈیوس کیسے ہوگا اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے روزے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیونکہ تقوی وہ فیول ہے جس سے ذمہ داریاں بھی ادا ہوتی ہیں، شہادت الناس کی اور شریعت پہ عمل کی بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور گھبراتے کیوں ہو؟ گنتی کے چند دن ہے، ایام معدودات۔ جمع ہے یہ، کون سی جمع؟ کہ جس کو 10 تک رکھے، یعنی جمع قلت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں، دن تو گنتی کے ہیں، گزر ہی جائیں گے۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے، اللہ ہم اس کی توفیق دے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ اس آیت سے لے کر اگلی کئی آیتیں ویلکم رمضان کے پروگرامز میں مستقل ہوئیں۔ زاد الخیر کے پہلے 3 دن انہی 3 آیتوں پہ تھے، اور اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سارے ویلکم رمضان کے پروگرام موجود ہیں جو آن لائن پہ ہوئے، کسی سے فائدہ اٹھا لیجئے، ان آیتوں کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ کوشش کریں گے رمضان شروع ہوتے ہی اگر کچھ بات ہم مزید پھر کر سکیں۔ اس وقت تو وہ سن کر خوش ہوئیے جو اس وقت آپ کے میرے سامنے ہے، اور وہ ہے قرآن کی خوبی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اللہ ہمیں اس مہینے کو پانے والوں میں شامل کر لے، اور روزہ رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی رمضان کے بعد عید کی تکبیرات کی طرف اشارہ کر دیا کہ چاہے تمہارے رمضان ہو یا تمہاری عید کا دن ہو، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ ہمیں بھی اسی کام کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہہ سکیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اس کے لیے شہادت الناس کی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مشکل لگ رہا ہے تو آؤ میں ذرا تمہیں بتاؤں کہ میں کتنی پیاری ہستی ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے، اللہ دور ہے کہ قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کے پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے تو زاد الخیر کا ڈے 3 उसका शुरू का हाफ सुन लीजिए तो आपको इंशाल्लाह इस आयत की बारीकियां समझ आएंगी। यहां बस इतना समझ लीजिए कि वाइजा साला के बाद ये नहीं कहा कि फकुल लहुम फनी करीब, नहीं, यानी सारे बीच के रास्ते की रुकावटें हटाकर अल्लाह इबादी कह रहे हैं। ये नहीं कहा कि मुत्तकियों को और मोमिनों और मोहसिनों को कह दो कि मुझे पुकारे, मैं गुनाहगारों से बात नहीं करता, नाउज़ुबिल्ला, इबादी मेरे बंदे, इबादुर रहमान। फिर आप देखिए कि यहाँ दावा का लफ्ज आया, दुआ नहीं कहा, तो दावत क्या होती है, एक ही बार पुकारा जाता है। आप किसी को कहते हैं आप मेरे घर आइए चाय पीजिए, दावत है ना, आप एक बार कहते हैं अगला खुशी खुशी आता है, दुआ बार बार पुकारी जाती है। ये जुमला वहां नहीं था बोला इसलिए बोल रही हूँ, लिख लीजिए दावत दाई नहीं कहा, वरना मानी क्या होना था कि एक ही बार पुकारेगा तो सुनूंगा, बात समझ गए, यानी यही कहा है इधर कि एक ही बार चलो जिंदगी में पुकार लो, और दुआ कहता तो पता था कि बार बार कहोगे तो मानूंगा। कुछ लोगों को आदत होती है लाड दिखाने की, नखरे करने की, कहते बार बार कहोगे तो मानूंगा, अच्छा आप कहते हैं तो मैं करती हूँ, ऐसा अंदाज नहीं है अल्लाह का। अल्लाह कहता मेरा बंदा आ जाए, करो क्या फल यस्तजीबुली, तदरीज के मानी है, पलट पलट कर मेरी तरफ आए, दौड़ कर नहीं आ सकता, क्रॉल करके आ जाए, आओ तो सही गौर तो करो। सही मुस्लिम की एक रिवायत है 2675, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है ये, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और मैं इसके साथ हूँ इल्म से जहाँ वो मेरी याद करे। इन अल्लाह यकूलू अना इन्ना जन्नी अब्दी बी वना माहू इजादानी, तो अल्लाह से हमेशा ये गुमान रखिए कि वो मेरी दुआएं सुनता है। दुआओं के बाद अब कुछ अहकामात रोजे की रातों के बारे में, और रोजे का जिक्र सिर्फ कुरान पाक में इसी जगह पे आता है, इसीलिए सब कुछ एक जगह है। उहिल्लकुम लैलतस्सियामिर्रफसिलानिसाइकुम, रोजों की रातों में अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो, तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह ताला को इल्म है, इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमा लिया, अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज को तलाश करने की इजाजत है। शौहर बीवी या औरत मर्द के ताल्लुक पे बहुत सारे ड्रामे फिल्में मौजूद हैं, रोमांटिक कोट्स मिल जाएंगे, शौहर बीवी क्या है, होम स्वीट होम और कुछ भी कहें, लेकिन जो कुरान ने जुमला बोला मेरा अल इससे ज्यादा इंटीमेसी वाला कोई सेंटेंस नहीं होगा कि हुन्न लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन। लिबास का काम क्या है, सतर पोशी। शौहर बीवी भी एक दूसरे के राज छुपाते हैं, कभी किसी की कमीज ने बोला ये अंदर से बड़ा सा पेट लेके बैठी हुई है, खुल्ले की वजह से नजर नहीं आता, या बाय में वरना तो पता चल जाएगा कितनी मोटी। तो शौहर बीवी को भी एक दूसरे के राज नहीं बताने चाहिए। लिबास खूबसूरती है, शौहर बीवी भी खूबसूरती होते हैं, कद काठ के बराबर होता है लिबास, शौहर बीवी के अंदर भी कफ होना चाहिए, और लिबास हकीकत में इंसान को गर्मी सर्दी से बचाता है, मौसम की शिद्दतों से बचाता है। तो शौहर बीवी भी दुख सुख के साथी हैं, एक दूसरे को कभी तन्हा नहीं छोड़ते, और अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की खूबसूरती को जाहिर करके बता दिया कि उम्मते मुस्लिमा के घरों में अगर सुकून होगा, शौहर बीवी का रिश्ता खूबसूरत होगा, आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाइड होंगे, मुतमईन होंगे, तो बाकी काम भी पुरसकून होंगे। तो पूरी कोशिश किया करें अपने घरों में सुकून रखने की, बीवी है तो शौहर को खुश रखे। हो गई अनबन ठीक है, एक मिनट में फॉरगिव फॉरगेट, रात गई बात गई। इसी तरह दूसरी तरफ से भी ये बराबर का मामला है, बीवी को पाँव की जूती कहना तौहीन है, बीवी का मजाजी खुदा बन के बैठना ये बहुत बड़ी जरूरत की बात है। आप गुस्से में चीख सकते हैं, ये नहीं चीख सकती, आप मूड बना सकते हैं, ये नहीं बना सकती, इसलिए कि ये अल्लाह वाली है, इसको पता है कि अगर मैं हक पे होते हुए भी अपना हक छोड़ दूंगी इसलिए कि झगड़ा ना बढ़े, तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे बहुत आला मुकाम देगा। अल्लाह ने इस सारी चीजों को पेश करके आपको मुझे कुछ मजीद अहकामात दिए आगे, कब तक खा पी सकते हैं सहरियों में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, हर साल पूछते हैं, ऐसे लगता है नए नए मुसलमान हुए हैं, हालांकि हर साल के रोजे रखे लेकिन अहकामात भूल भूल जाते हैं। तो फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबैन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजरी, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात को रोजा पूरा करो, और औरतों से उस वक्त मुबाशरत ना करो जब कि तुम मस्जिद में इतिकाफ की हालत में हो, क्यों, इसलिए कि ये अल्लाह की हदूद हैं, तुम इनके करीब भी ना जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें। तो एक माइंड मैप देखिएगा कि उम्मते वसत की ताकत और अकाई मजबूत घर है। होम स्वीट होम कब होता है, जब शौहर बीवी एक दूसरे का लिबास बनते हैं, एक दूसरे की हिदायत की फिक्र करते हैं और करनी चाहिए। आपको अपने शोहर की और शोहरों को अपनी बीवियों की हिदायत की फिक्र करनी चाहिए कि बेगम आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, जाइए पढ़ के आइए फिर खाना खाएंगे। ये नहीं कि वो बेचारी आपके खौफ से नमाजें छोड़ रही है कि खाना लेट हो गया तो कहीं आपकी जुबान से कुछ सख्त लफ्ज ना निकल जाए। इसी तरह इल्जाम तराशी और ऐप जो नहीं करनी चाहिए एक दूसरे पर। और सबसे बड़ी बात, शोहर बीवी तो दी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अपने मकसद हयात पे नजर रखें। शोहर बीवी बैठ के बात करते हैं कैसे शहादत अलन्नास की जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर बच्चे बड़े होते जाएंगे फिर उनको बताएंगे, और इस तरह ये उम्मत सुधरती ही जाएगी। याद रखिए उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अल्लाह करे कि मैं और आप उसका हिस्सा बन जाएं। फिर कुछ और चीजें जिससे ये जिम्मेदारी भूलती है, और वो है कमाई में किसी नाजायज चीज का आना। तो फरमाया वला ताकुल अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, और एक दूसरे का माल ना हक ना खाया करो, और ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्मों सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। यानी माल हलाल रखो, मर्द की ये बड़ी जिम्मेदारी है। औरत इज्जत निगाह को पाक रखे, मर्द भी, और साथ ही साथ रिस्के हलाल। आगे चांद के मसाइल और कुछ ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक फितनों से है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए ये लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है, एहराम की हालत में और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो, और घरों में तो दरवाजों में से ही आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क्या पता चला काम सही करो। मक्का वाले अगर एहराम बांध कर घर से निकलते और कोई चीज भूल चुके होते तो वापस नहीं आते थे दरवाजे से, कहते थे कि अब तो हम बगैर हज किए क्यों आए, उमरा किए क्यों आए, तो उस पे घर के दरवाजे के पीछे यानी बैक डोर से आते थे। तो अल्लाह ने कहा ऐसी बेकार चीजों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। असल इन टोटकों में पढ़कर लोग असल दीन को भूलते हैं। तो मते वसत को कुछ मजीद हिदायत इन आयात में नोट कीजिएगा। नंबर एक, बातिल तरीके से माल न खाइए, कामों को सही तरीके से कीजिए, और चांद के बारे में झगड़े नहीं करने। बस दफा हर रमजान से पहले भी झगड़े होते हैं, चांद नजर आया कि ना आया, और साथ ही हम क्या सोचते हैं, खा गए एक रोजा। लिखिए इस साल रमजान का आगाज नेगेटिविटी के साथ नहीं करना। रूहते हलाल कमेटी और हुकूमत को कोसना नहीं है, और अपना ही एक चांद बनाकर उसकी वजह से रोजा भी नहीं रखना अगर के अनाउंस नहीं हुआ, और अनाउंस हो गया और कहा ऐसे ही कर दिया। झगड़ों से बचो, अल्लाह के लिए घर के बाहर के उम्मत के मिल्लत के दीनदारों के मसलकों के फर्क के झगड़े खत्म कीजिए। हमें दुश्मनों से लड़ना था और हम आपस में लड़ते रहे, इसी का हुक्म अब अगली आयतों में मुस्तकिल चलेगा कई आयात तक, जिसमें अल्लाह ताला हुक्म क्या देते हैं, वकातिलु फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला तअतदू, लड़ो अल्लाह की राह में किससे, जो तुमसे लड़े, जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो। अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये किससे ज्यादती नहीं करनी, दुश्मन से नहीं तो क्या भाई बहनों से की जा सकती है, साथ कारोबार करने वालों से की जा सकती है। तो नोट कीजिएगा, मैनर्स एटिकेट्स आदाब जंग के, कितना पीसफुल दीन है कि जिसमें कहते हैं कि टू हैव वॉर टू हैव द पीस। इस्लाम में जंग के मकासिद में एक बहुत बड़ा मकसद पीस है। इन्हें मारो जहां भी पाओ, और इन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और सुनो फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। नोट कीजिएगा, ये है इस आयत की फितने के मुतल्लिक आयत, और लिखिए कि यहाँ फितने से मुराद कत्ल है। मुख्तलिफ मानी आप पूरे कुरान की आयात के मुताबिक इंशाल्लाह नोट करते रहेंगे। तो जब कत्ल के मानों में आता है तो फिर कैसे होता है, खास तौर पे अब यहाँ देखिए कि अगली एक आयत इसी के साथ आ रही है आगे भी। तो इधर फितना बमानी शिर्क भी है कि शिर्क का खात्मा है। इस्लाम में जंगें शिर्क के खात्मे के लिए भी होती हैं। परसीक्वेशन से भी रुक जाओ तो पता क्या चला कि जब किसी जगह दीन पे अमल करने की वजह से परेशानियां हो रही हैं या फिर वहां शिर्क फैल रहा है, तो उस शिर्क के खात्मे के लिए इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए जितनी कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई न करो जब तक कि वो खुद तुमसे न लड़े, अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का यही बदला है। हाँ मगर अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इनसे लड़ो जब तक के फितना ना मिट जाए, हाईलाइट कीजिए, शिर्क ना मिट जाए, परसिक्वेशन ना मिट जाए, और अल्लाह का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। कितना प्यारा अदब सिखाया जा रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत है 4522। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिदीन को फरमाया यानी जो जंग के लिए निकलते थे उनको हुक्म दिया करते थे आप क्या, कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, खयानत ना करो, बदहदी से बचो, नाक का नाजा न काटो, बच्चों को और जाहिद लोगों को जो इबादत खानों में पड़े रहते हैं कत्ल ना करो। अल्लाह ताला आज के मुसलमानों को भी इन सारे अहकामात पे अमल करने वाला बनाए ताकि लोग उनके नए नए नाम ना बना सकें। तो क्या सीखा, एक माइंड मैप देखिएगा, उम्मते वसत का मकसद हयात क्या है, लोगों को रब से जोड़ना, अल्लाह के दीन को नाफिज करना, लोगों को मारूफ का हुक्म देना और मुनकर से रोकना, और फितने को रोकना, क्योंकि वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। आगे हुरमत वाले महीनों की कुछ बातें, अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुरमत वाले महीने हुरमत वाले महीनों के बदले हैं और हुरमतें अदले बदले की हैं, जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी इसी पर इसी के मिसल ज्यादती करो जो तुम पर की है, और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। इसकी डिटेल्स हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, और सलूक और एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। खुद को हलाकत में डालना क्या है, अल्लाह के दीन पे खर्च ना करना। याद रखिए शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी है कि आज हम अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं करते, रिसोर्सेज नहीं होते तो बात दूर तक नहीं पहुंचती। तो माल में कमी के अंदेशे के पेशे नजर ना खर्च करने का फितना, इसको एक माइंड मैप की सूरत में देखिएगा। इन्फाक फी सबीलिल्लाह माल में इजाफे का सबब बनता है। अल्लाह ताला की खुशनुदी को मद्देनजर रखते हुए खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को दोस्त रखता है, और इंसानियत के काम आने वाली तमाम शक्लें ही इन्फाक फी सबीलिल्लाह की हैं। अब आगे हज और उमरे से मुतल्लिक कुछ अहकामात, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उमरे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक तो कुर्बानी अपने मुकाम तक ना पहुंच जाए सर न मुंडाओ, और अगर कोई तुम में से बीमार हो या इसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो और अगर वो सर मुंडवा ले तो इसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे, फिर जब तकलीफ दूर हो कर तुम मुतमईन हो जाओ, जो तुम में से हज के वक्त तक उमरे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 रोजे या में हज में रखे, और 7 जब वापिस हो, ये पूरे 10 हुए। यानी हज के दिनों में अगर कुर्बानी नहीं कर सकता हाजी तो उसका ये कफारा है। ये हुक्म इस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में ना रहते हों, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह ने एक एक चीज खोल के रख दी। हज का भी टॉपिक यहाँ कदरे डिटेल से है। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी भी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफर खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है, और अकलमंदो मुझसे डरते रहो। यानी सिर्फ इसलिए चले जाना कि वहां भीख मांग मांग के खा लेंगे ये दुरुस्त तरीका नहीं है। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मस्जिद हराम के पास जिक्र इलाही करो, और इसका जिक्र करो जैसे कि इसने तुम्हें हिदायत दी है, तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। सोचिए कुरान से ताल्लुक से पहले की जिंदगी, तो आता है ना कि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ताला आपको मुझे क्यामत के दिन इस शर्मिंदगी से बचा दे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये एक माइंड मैप है कि हज के दिनों में ये सारे अरकान जो भी हमने पढ़े तो ये एक पिक्चर की सूरत में हमारे सामने है, जिससे पता चलता है कि हज को उसके तरीके के मुताबिक अदा करना है। फिर क्या होगा, फिर जब तुम अरकान हज अदा कर लो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने अबा अजदाद का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं, ये देखिए दुनिया दिल में फंसी हो तो जिम्मेदारियां कैसे अदा होती हैं, ऐसे लोगों की दुआएं बताती हैं ये बात। क्या कहते हैं, हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वक्त ही नहीं मिलता कि शहादत अलन्नास की जिम्मेदारियां अदा करें, लेकिन सब ऐसे नहीं है, कुछ कैसे हैं। और बस लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखरत में भी भलाई अता फरमा, और अजाब जहन्नुम से निजात दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये वो लोग हैं जिनके लिए इनके आमाल का हिस्सा है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। बड़ी प्यारी दुआ है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हमारी दुआएं क़यामत के दिन सब जमा होंगी। और सही बुखारी के एक रिवायत में से अल्लाह के नबी सल्लम का जो कॉल मिलता है कि ये दुनिया यानी इसका माल सरसब्ज़ और मीठा है, और सूरत आल इमरान में भी हम पढ़ेंगे ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावात, तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ आपको मुझे क्यों दिखाया, क्यों बताया कि सिर्फ दुनिया ना मांगी आखिरत भी मांगी है। एक माइंड मैप देखिएगा कि दो तरह के लोग और दो तरह की दुआएं। दुनिया वाले सिर्फ दुनिया की दुआएं मांगते हैं और आखिरत वाले दुनिया और आखिरत दोनों की दुआएं मांगते हैं। तो दुनिया की ख्वाहिशात का फितना उम्मत वसत की अक्सरियत का हाल है, इसीलिए शहादत अलन्नास का फरीजा और इस जिम्मेदारी से गाफिल है। फिर हज के कुछ और रिचुअल्स और अल्लाह तला की याद इन गिनती के चंद अयाम यानी अयाम तशरीक में करो। दो दिन की जल्दी करने वालों पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है और अल्लाह तला से डरते रहो और जान रखो तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। कुछ बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अमल अच्छे नहीं है, ऐसे किरदार का तस्करा। बस लोगों की दुनियावी गरज की बातें आपको खुश कर देती हैं, वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो जबरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर जाता है तो जमीन पर फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करते हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, हुकूमत मिलने से पहले के दावे और अमल और फिर क्या होता है 206, और जब उसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तासुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नुम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। तो क्या पता चला इसमें, तकब्बुर और तासुब का फितना। इसकी वजह से बंदा गुनाह पर आमादा हो जाता है। दौरे हाजिर में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कौम परस्ती और तासुब के फितने का शिकार है। इल्म हुसन हसब नसब पर तकब्बुर है। तकब्बुर और तासुब के फितने का शिकार इंसान वजह दीन से दूरी है, इसीलिए तो फिर शहादत अलन्नास नहीं कर पाते। इसी तरह बेजा तासुब करने वालों का पेशवा शैतान होता है और इंजाम सब का क्या है, जहन्नम जो बदतरीन जगह। इसके बरक्स अल्लाह के रास्ते में अपनी जान खपाने वालों में से एक किरदार आपके लिए मेरे लिए रोल मॉडल, कैसे वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। और बास लोग वो भी हैं जो अल्लाह की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलील आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला बादल के सायबानों में आ जाए और फरिश्ते भी और काम इंतहा को पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। तो इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना क्या है, ताकि पूरे इस्लाम से फायदा उठाओ फिर शहादत अलन्नास का काम करोगे। याद रखिए हम अक्ल के चौकीदार को साथ लेकर आते हैं, अगर अक्ल में बात आई तो मानेंगे, नहीं आई तो नहीं मानेंगे, फायदा हुआ तो मानेंगे, ना हुआ तो नहीं मानेंगे। एफ्स एंड बट्स वाला इस्लाम नहीं चाहिए, प्रोज एंड कॉन वाला इस्लाम नहीं चाहिए। अल्लाह कहते पूरी शरीयत को एंजॉय तो करो। आज के मुसलमान माजी के बनी इसराइल का आईना बने हुए हैं। कोई कश्तियों में से दो पे बैठ जाए तो डूबेगा ना। दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ शख्स बाहर से आने वालों को भी रोक लेता है तो अधूरी नहीं पूरी इताअत करेंगे तो शहादत अलन्नास होगा। अंदर आइए, डरते क्यों हैं? अब देखिए पिज्जा किनारों से सख्त होता है, जितना अंदर से खाते जाए मजे का होगा। तो इस्लाम की पूरी समझ उन लोगों को आती है जो पूरा इस्लाम लेते हैं। दूर से देखने वाले को इस्लाम बहुत सख्त लगता है, जैसे मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी की लाइटें दूसरी तरफ वाले की आंखें चुंधिया देती हैं। तो आपको मुझे यहाँ यही कहा जा रहा है, क्या ये दीन को सीखते हुए पूरा दीन सीखिए ताकि बाद में दूसरी चीजों को भी मान सकें। और फिर बनी इसराइल से एक सवाल पूछा जा रहा है, बनी इसराइल से पूछो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियां ता फरमाई اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، تو مروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل کے آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف سے اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے اور ہمارے حق میں بھی ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت سوال، جو اصل میں سوال نہیں بلکہ شعور کو بیدار کرنے والی چیز ہے۔ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کا یقین دلا دے۔ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ دیکھیے صحابہ کا یہ سوال آگے بھی آئے گا، یسلونک ماذا ینفقون۔ صحابہ کا سوال اور امت وسط کا حال مائنڈ میپ میں دیکھیے گا۔ صحابہ کہتے تھے کیا خرچ کریں، آج امت وسط کے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا بچا لیں، ڈوریوں کا بھی وزن زکات میں تلے گا، نگوں کا بھی ہوگا، نئے پرانے سونے کا ہوگا، تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل سے یہ ڈاؤٹس نکال دے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ۔ تیسری دفعہ دیکھیے لفظ فتنہ اس بارے میں آ رہا ہے، اور ہر جگہ پرسیکویشن اور شرک کا معنی دے رہا ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا، دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا یعنی رجب، مضر، جو جمادی الاخرى اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو شروع سے ہی رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اصل میں اللہ کو جو مطلوب ہے نا وہ یہ ہے، اسی کے لیے نمازیں پڑھائی جاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کی ہجرت کر لو، اور اسی کے لیے پھر روزے رکھوائے جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے ان کی دنیا اچھی نہیں ہوگی اور نہ آخرت۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ حرمت شراب کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے، 3 آیتیں ہم پڑھیں گے ٹوٹل۔ جملہ ایک لکھ لیجئے کہ شراب عربوں کی گھٹی میں بڑی ہوئی تھی، पानी तो नायाब था क्योंकि सहरा था तो शराब भी पीते थे। अल्लाह ने एकदम नहीं हटाया और आहिस्ता आहिस्ता करके अब यहाँ जहन साजी कर दी, आगे जाकर अहकाम दे दिए जाएंगे। जुमला लिखिए, इस्लाम कबूल करने में यानी अल्लाह को पहचान लिया तो जल्दी कीजिए, रेवोल्यूशन है इसमें, इनकलाब आता है जूं ही अल्लाह की मार्फत हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। लेकिन आमाल पे और शरीयत पे अमल करने में एवोल्यूशन होनी चाहिए, रेवोल्यूशन वर्सेस एवोल्यूशन यानी आहिस्तगी। आप भी किसी नए बंदे के पीछे ना पड़े, उसको समझने दीजिए, अल्लाह उसका दिल खोलेगा, एक एक करके पूरी शरीयत पे अमल होगा इंशाल्लाह। पहले हम बोन मुस्लिम तो ये काम कर लें। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें। देखिए दोबारा सवाल किया साहबा ने, तो आप कह दीजिए हाजत से ज्यादा चीज। देखिए दो रास्ते हैं, एक अजीमत का जो अल्लाह के नबी और अक्सर सहाबा ने अपने लिए इख्तियार किया था, उसमें तो यह है कि सब ज्यादा खर्च कर दो। जैसे हजरत आयशा के पास अशरफियां आती शाम तक खाली कर देती, लॉन्डी कहती कि जरा कुछ थोड़ी सी अशरफियां रख लेती, हम आटा ले लेते, कहती मुझे याद ही नहीं। और कुछ हैं कि अपने रिश्तेदारों पे लगाइए, तो हर इंसान के हालात और उसके दिल पे इसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला इस तरह से अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ बूझ रखो अमूरे दीनी और दुनियावी को, यानी दोनों चीजों में अक्ल के साथ फैसले करने चाहिए। और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है, तुम अगर इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। यतीमों के बारे में कुरान बहुत बात करता है, बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह खूब जानता है। और अगर अल्लाह तुम्हें मुशक्कत में डाल देता, यानी अगर अल्लाह मुश्किल करता तो मुशक्कत में डाल देता। अल्लाह अकबर, यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। यहां तक देखिए शरीयत का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हुआ, जिसमें अकीदे से लेके इबादात की बहुत सारी चीजें, जिसमें रोजे से बात शुरू करते करते जिहाद और हज की हुई। आज हम यहीं रुकेंगे, हमारा टारगेट यहां तक था, क्योंकि इतनी शरीयत पे भी अमल कर लेंगे तो बड़ी बात है। इससे आगे इंशाल्लाह अगला सेशन हमारा निकाह और तलाक के मसाइल से शुरू होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उम्मते वसत का फरीजा अदा करवाए, जिम्मेदारियां अदा करवाए और उम्मते वसत के घरानों की इसलाह करे। कल शुरू में ही हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि देर ना हो आपको ज्वाइन करने में। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे। इतना कुछ इकट्ठा सुनना ऐसे लगता है कई गिलास पानी के इकट्ठे पी लिए, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, इस छोटे से दिल में कैसे समाएगा। आपको मुझे अल्लाह ताला आफियत में रखे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।